ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशाम् मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः दृष्टश्रुताभ्याम् मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृतिः यतो यतो धावति दैवचोदिताम् मनोविकारात्मकमापपञ्चसु गुणेषु मायारचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते ज्योतिर्जथैवोदकपार्थिवेश्वदः समीरवेगानुगतम् विभाव्यते एवम् स्वमायारचिते स्वसौपमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यते न तस्मात् कस्यचिद्रोहाम् आचरेत् स तथाविधः आत्मनो क्षेममन्विच्छन् द्रोग्धुर्वै परतो भयम् एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुम् नार्हसि कल्याणीम् इमाम् त्वम् दीनवत्सलः श्री वसुदेव जी कंस को शिक्षा दे रहे हैं। यह सुन करके पढ़ करके आप लोगों को आश्चर्य होना चाहिए कि भगवान के अवतार की कथा में मृत्यु और जन्म की चर्चा क्या संगत है। श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति आत्मा की नित्यता को नहीं समझ जाता है और शरीर की नश्वरता को और इस कारण से भोगों की असारता इत्यादि का ज्ञान जब तक नहीं हो जाता है तब तक भगवत कथा में रुचि नहीं होती है। अन्यथा भगवान कृष्ण के अवतार की कथा के समय ये मृत्यु के रहस्य का उद्घाटन करना मृत्यु अनिवार्य है यह देने की क्या आवश्यकता है। बहुत आवश्यक है। जैसे कोई चतुर वैद्य कोई दवा देता है औषधि देता है उसके साथ साथ और भी वस्तुएं देता है जिसको अनुपान कहते हैं या पथ्य परहेज करने के लिए। इसी तरह से वास्तव में दिव्य कृष्ण कथामृत देना है अमृत देना है लेकिन इस अमृत को देने के पहले हृदय के कसाय को शुद्ध करके बाहर कर देना है। गंदे पात्र में यह अमृत नहीं दिया जाएगा। अतः इस भागवत के रचयिता भगवान व्यास देव बीच बीच में धुलाई करते जाते हैं साफ तब कृष्ण कथा ठीक से बैठ पाती है। तो किसी किसी को ऐसे मन में शंका होती होगी कि बीच बीच में इतनी फिलॉसफी देने की क्या जरूरत है। जरा अच्छे कथा कहिए कि जन्म हुआ, इसके बाद गोकुल गए, खेले खाए, मक्खन चुराए, गा बजा करके पार कर दिया जाए। ऐसे मन में होता है तो क्या सुखदेव गोस्वामी या महाराज परीक्षित कोई पागल हो गए थे क्या, ये बीच में इतनी फिलॉसफी बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित सुन रहे हैं और भगवान के पिता श्री वसुदेव जी के मुख से यह फिलॉसफी दी जा रही है, बहुत आवश्यक। उस अमृत से भी आवश्यक यह औषधि है। जैसे मान लीजिए बहुत सुंदर पदार्थ है, पायस है, खीर है, गुलाब जामुन है, लेकिन बुखार चढ़ा हुआ है, रोग हुआ है, और कोई व्यक्ति कहे खिलाओ उसको, भोजन खिलाओ इतना स्वादिष्ट, कोई चतुर वैद्य कहेगा नहीं नहीं नहीं, पहले दवा खिलाइए, पहले रोग तो दूर हो जाए, नहीं तो भगवान की लीलाओं को क्या कोई समझेगा। इसीलिए ज्ञान वैराग्य की बहुत आवश्यकता है, यह पात्रता देता है जहां भगवान की भक्ति शुद्ध रूप में टिकती है। जैसे मान लीजिए आपको दूध खरीदना है, बाजार में जाइए दूध खरीदने के लिए, तो दुकानदार कहेगा कि इसके लिए पात्र लाए हैं। यदि आप ये कहें कि पात्र की क्या जरूरत है, हमारे पैकेट में रख दो दूध या झोला में दे दो, कितना सामान ढोया हूं, क्या दूध नहीं ढो सकता है? लेकिन वो दुकानदार ऐसी मूर्खता नहीं करेगा कि उसके पैकेट में दूध दे दे। कृष्ण कथामृत लेने के लिए अधिकार चाहिए, उसकी योग्यता होती है, पात्रता होती है। वह पात्रता वैराग्य है और वैराग्य होता है ज्ञान से। ऐसे यह बात जरूर है कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति से ही होते हैं, भक्ति जननी है ज्ञान वैराग्य, तो फिर भी प्रारंभ में इनकी बहुत आवश्यकता होती है। अतः बीच बीच में इस प्रकार का दर्शन दिया गया है, हम भक्तों को उसी अनुराग के साथ ये सब भी प्रसंग सुनना चाहिए जिस अनुराग के साथ हम लोग रासलीला सुनते हैं या भगवान के गोवर्धन धारण आदि लीलाओं को सुनते हैं, तो कोई भेद नहीं है। तो कल चर्चा हो रहे थे कंस मृत्यु के भय से मृत्यु का परिहार करने के लिए देवकी का वध करना चाहता है। वो बेचारी रो रहे थे, उसकी चोटी पकड़ी गई थी और चोटी पकड़ने में कंस यह विचार नहीं कर रहा था कि केवल हाथ से पकड़ लूं, बहुत जोर से खींच रहा था, इसलिए दर्द हो रहा था देवकी को। और यह संभावना करके कि यह मुझे मार देगा, मेरा मस्तक काट देगा, बेचारी रो रही थी। इसी सुमंगल दिन पर जिस दिन पति के घर में जा रही है, प्रथम दिन ही यह संकट आ गया देवकी को। तो वह बहुत दुखी थी, रो रही थी। श्री वसुदेव जी कंस को शिक्षा दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है और शरीर निश्चित ही नश्वर है। शरीर कब चला जाएगा इसका ज्ञान शरीरधारी को, जो शरीर ग्रहण किया है उसको पता नहीं होता है, लेकिन हायर अथॉरिटी जो ऊपर के अधिकारी हैं, जैसे ब्रह्मा जी या भगवान, इन लोगों को पता है कि कब शरीर चला जाएगा, उनको लिख करके रखते हैं इस समय शरीर चला जाएगा। तो शरीर चला जाना इसको मृत्यु कहते हैं और दूसरा शरीर ग्रहण करना इसको जन्म कहते हैं। एक कंस जैसे अज्ञ व्यक्ति के लिए यह अनुभव कर पाना कि मृत्यु क्या है और जन्म क्या है, कैसे मृत्यु होती है और कैसे जन्म होता है, जो जानना बड़ा कठिन है। अतः कंस ने प्रश्न किया कि मैं कैसे मानूं कि आत्मा जन्म लेता है दूसरे शरीर में और यह शरीर छोड़ देता है। जो कंस का ही प्रश्न नहीं, हम सबका प्रश्न हो सकता है। हम लोग जन्म लिए हैं, एक बार नहीं कोटि कोटि बार जन्म लिए हैं, और आगे भी जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उन्हें बारंबार शरीर ग्रहण करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आत्मा के साथ यह व्यवस्था लगी हुई है, हम सबके साथ ये समस्या है। हमारी समस्या का, हमारे प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए श्रीमद् भागवतम रचा गया है। क्या हम इसी तरह से शरीर में जन्म लें, बुढ़ापा, रोग, दुख, शोक, मोह, भूख, प्यास भोगते रहे, फिर दूसरे शरीर ग्रहण करें, फिर वही दुख? आप देख रहे हैं सबके सामने समस्या है। जैसा श्रीपाद सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, के आमे केने आमाय जारे तात्र यह नहीं जाने के मन हित है। मैं कौन हूं और हमको क्यों तीनों तापों से जलाया जा रहा है? मैं नहीं चाहता हूं कोई दुख, लेकिन दुख इम्पोज किया जाता है, जबरदस्ती डाला जा रहा है। क्या हमने गलती किया है और कौन दुख दे रहा है? किने हमें जारे तापत्र, हमको तीनों तप क्यों जला रहे हैं? और मैं कौन हूं? और यह अभी मैं नहीं जानता हूं कि ये तीनों तापों से, इन दुखों से मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा, मुझे पता नहीं है बिल्कुल। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि सनातन गोस्वामी जी, आप तो विख्यात पंडित रहे हैं, नवाब हुसैन शाह इनको पंडित जी कहा करता था। वास्तव में अद्भुत मेधा शक्ति थी इन दोनों भाइयों की, श्रील रूप गोस्वामी पाद और श्री सनातन गोस्वामी पाद, अद्भुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, लोक व्यवहार। जब भगवान ने कहा कि आप तो परम मेधावी हैं, विद्वान हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं कि आप कौन हैं और आपको क्यों तीनों तापों से जलाया जा रहा है और किस प्रकार से इसे अव्याहति प्राप्त होगी, ये सब आपको पता है, तब श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते नहीं नहीं, ग्राम में व्यवहारे पंडिताई सत्य मानी, मैं ग्राम में व्यवहार में पंडित हूं, लौकिक दुनियादारी में पैसा कमाना, शासन करना, ये करना, इसमें मैं बहुत प्रवीण रहा, लेकिन मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं कौन हूं इसको भी नहीं जानता, अपना ही परिचय मुझे मालूम नहीं है। किसी व्यक्ति से आप पूछिए आप कौन है, वो कहे कि आप बताइए हम कौन है, हमको पता नहीं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी भगवान से पूछ रहे हैं कि के आमी, नामी के, मैं कौन हूं, ये दशा जीव, हमको पता नहीं कि हम कौन है। इस लोक में भी हम लोग देखते हैं, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, शरीर में कुछ हो जाता है, उस शरीरधारी जीव को स्वयं पता नहीं होता है कि शरीर में क्या हो गया है, तो वैद्य के पास जाता है और अपनी नब्ज पकड़ने के लिए कहता है, हाथ पकड़ता है, कहता है वैद्य जी, डॉक्टर साहब, कृपया बताइए हमको क्या हो गया है, हमको खुद पता नहीं। तो बाहर का व्यक्ति जो अभिज्ञ है, वाला लगा करके या चाहे जैसे तैसे बताता है तुमको ये हो गया है, तुमको ये खराबी हो गई, ये तो सामान्य शरीर रोग की बात है, लेकिन वास्तव में एक ऐसा भयावह रोग है जिसे मानस रोग कहते हैं, जीव को यह भी पता नहीं है कि हम कौन है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसका उत्तर देते हुए कहे, मैं उस संक्षेप में बात कह देना चाहता हूं, के आमी का उत्तर देते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सनातन जी आप ही नहीं, परंतु इस जगत में जितने भी चार आचार जीव हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये परिचय है जीव का, आपका और अन्य सबका। उन्होंने तो व्यक्तिगत अपने विषय में पूछा कि मैं कौन हूं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सारे जीव कृष्ण के नित्य दास। कैसे दास हैं? कृष्ण और तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कृष्ण की तटस्था शक्ति, कृष्ण के ही अंश, चिन्मय अंश, यह परिचय हुआ। सब ठीक है, तो हमको दुख क्यों दिया जा रहा है, क्यों सताया जा रहा है? कृष्णेर भूलि सी सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देश अनुसार, ये उत्तर है चैतन्य महाप्रभु। जीव कृष्ण को भूला हुआ है क्योंकि अनादि काल से विमुख है, बहिर्मुख है, और इस कारण से भगवान की बहिरंगा शक्ति उसको दुख देती है, कभी स्वर्गे उठा, कभी नरके डुबाए, दंड जने राजा जन नदी तो चुभा है किने आमाय जारे तापत्रय का उत्तर इस कारण से दुख। किसी भी जीव को क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि कृष्ण की स्मृति नहीं कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, यही दुख का मूल कारण। जब कृष्ण का स्मरण करता है जीव, भक्ति करता है, तो माया उसे छोड़ देती है, ठीक है जाओ बेटा ठीक हो गया, नहीं तो इसके पहले खूब मारती है। श्रील प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं कि माया किक्स पैर से मारती है विमुख जीवों को, पैर से मारना ही तो हुआ, कभी गर्भ में डालना, कभी नरक में डालना, कभी इधर उधर, कभी अस्पताल में डाल देना, कभी कुछ करना, ये माया इस तरह से सताती है। और फिर भी जीव इतने मूर्ख हैं कि कहते हैं हम आई एम हैप्पी, मैं सुखी हूं, माई स्वीट होम, माई स्वीट फैमिली, दंड दिया जा रहा है माया के द्वारा, और आदमी मान लेता है कि मैं सुखी हूं। सब जगह आप देख रहे हैं हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ, सुखी 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 क्या, दुख दिया जा रहा है। कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति इस बात का रियलाइजेशन करता है केने हमें जा रहे तपत्र है, हमको दुख है वास्तव में, लेकिन कौन दुख दे रहा है, क्यों दुख दे रहा है, इन बातों को समझना आवश्यक। यहाँ पर श्री वसुदेव जी जीवन के शाश्वत सत्य को समझा रहे हैं, और वास्तव में यह श्रीमद् भागवतम हम लोगों के लिए है। कंस तो उसी समय चला गया, भगवान मथुरा में उसका वध कर दिया, और वो कंस चला गया तो फिर किसी जन्म में नहीं गया, तो सीधे भगवान के धाम चला गया, उसको क्या जरूरत भागवत की है। लेकिन भागवत हम लोगों के लिए, कैसे जीव जन्म लेता है, और वास्तव में जन्म का मतलब या मरण का मतलब केवल देह विषय एवं त्याग स्वीकार। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि वास्तव में देह को स्वीकार करना और देह को छोड़ देना, इसी को मृत्यु कहते हैं। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, न आत्मा का जन्म होता है, परंतु जन्म मृत्यु को समझने के लिए ये दृष्टांत दे रहे हैं कि किस प्रकार सपना में जीव दूसरे शरीर को स्वीकार कर लेता है आत्मतया, मैं मान करके, और जागृत देह को भूल जाता है। समझा रहे हैं दृष्टांत द्वारा, स्वप्ने जथा पश्यति देहमिदृशं मनोरथेनाभिनिविष्ट चेतनः दृष्ट श्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि यपस्मृतिः। इसका अन्वय इस तरह से करेंगे, दृष्ट श्रुताभ्यां, जीव विशेषकर मनुष्य कुछ चीज देखता है इस संसार में, जैसे हम लोग अपने चतुर्दिक देख रहे हैं, जब से जन्म हुआ है तब से देखते हैं, दृष्टम। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं दृष्टम राजादि दर्शनम, विशेष करके हम लोग कभी कभी देखते हैं, विचारते हैं राजा, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, गवर्नर इत्यादि देखते हैं, राज दर्शन, राजादि दर्शन देखते हैं। तो देखते हैं और कुछ सुनते हैं, इंद्रादि श्रवणम, इंद्रादि के विषय में सुनते हैं कि स्वर्ग में भी इतने सुखी हैं, इतने महान हैं, ऐसे हैं, ऐसे कुछ सुनते हैं। जो देखते हैं उसका भी संस्कार हृदय पर पड़ जाता है, और जो सुनते हैं उसका भी संस्कार पड़ जाता है। आजकल तो इंद्रादि के विषय में कोई नहीं श्रवण करता है, जो अमेरिका आदि के विषय में ज्यादा श्रवण करता है, वहां ये सुख है, वहां ये है, वहां ये है, ऐसे है, ऐसे। तो सुनते हैं तो उसका एक चित्र बनता है हृदय पर। एक बार एक महात्मा ने कहा था कि ये जड़ कैमरा, मैटर है कैमरा, वो अभी फोटो ले लेता है, हृदय तो चेतन है, यह क्यों नहीं फोटो ले लेगा जो देखेगा उसको। ये अपने आप खींच लेता है, और इतना अमिट चित्र होता है कि कभी स्वप्न में देखने लगता है, कभी कुछ देखने लगता है। दृष्ट श्रोताभ्याम जो हम देखते हैं और सुनते हैं, देखते हैं लौकिक चीजों को और पारलौकिक चीजों को, स्वर्ग आदि के विषय में सुनते हैं, तो इससे आहित संस्कारेण मनसा तदेव अनुचिंतन। जो देखता है जीव और जो सुनता है उसी का संस्कार बन जाता है, हृदय पर अमिट चित्र बनते हैं उसके। और ऐसे संस्कारों से युक्त मन से फिर व्यक्ति उसी का चिंतन करता, तदेव अनुचिंतन। तदेव का अर्थ है कि जो देखा है और जो सुना है उसी का चिंतन करता रहता है। यह बिल्कुल फैक्ट है। और जो देखता है सुनता है उसी का चिंतन करता है। अच्छा, कुछ देर चिंतन करता है और कुछ देर के बाद ही प्रपद्यमान, प्रपद्यमान का अर्थ है कि वह यह भावना करता है कि मैं ही वह हूं, ऐसी भावना होने लगती है। पहले तो देखता है सुनता है चिंतन करता है, चिंतन करते करते ये भावना हो जाती है कि मैं वह हूं, यह मेरा है, ऐसा है वैसा है, मनोरथ करने लगता है। मनोरथ है ना भिन्विष्ट चेतना, मनोरथ करता है हमको होना चाहिए, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। और इस दशा में अपस्मृति, अपस्मृति का अर्थ है कि जो जागृत देह में था वह उसको भूल जाता है। सपने जथा पश्यति देह मुद्रसम, जो देखा है सुना है वैसा ही देह वो सपने में देखने लगता है। ईदृशम कीदृशम कमपि किमपि, इसका अर्थ अनिरुक्तम, जो सपना देख रहा है वही जानता है कि क्या देख रहा है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जानता है। इसीलिए श्रील वसुदेव जी कहते हैं किमपि, क्या कहे, स्वप्ने जथा पश्यति देह में दृश्यम, जो देखा है सुना है उसी देह को सपना में देखने लगता है। कैसा देह देखता है तो उसके लिए किमपि शब्द कर रहे हैं, कुछ भी गारंटी तो कहा नहीं जा सकता कि इस समय यह व्यक्ति यही सपना देख रहा है। जैसे मान लीजिए बेड पर पड़ा हुआ कोई व्यक्ति सपना देख रहा है, तो क्या दूसरा कोई भी व्यक्ति एक्सरे करके या जैसे तैसे समझ सकता है कि क्या सपना देख रहा है? नहीं समझ सकता। आजकल के बहुत ऊंचे पढ़े लिखे वैज्ञानिक भी नहीं जान पाएंगे कि कौन सा सपना देख रहा है, सपना में खा रहा है कि कहीं जा रहा है, पक्षी बना हुआ है या प्राइम मिनिस्टर बन करके शासन कर रहा है, कुछ भी पता नहीं है। किमपि इसीलिए तो उसका अर्थ करते हैं श्री श्रीधर स्वामी अनिरुक्तम, किमपि अनिरुक्तम, उसको कहा नहीं जा सकता क्या देख रहा है। और उसको अगर जगाएंगे पूछने के लिए कि क्या देख रहा है वो, तो नींद खुल जाएगी, देख नहीं पाएगा। लेकिन वो देखता रहता है, दूसरे शरीर देख रहा है, जो देखा है सुना है उसी को सपना में देखता है, शरीर देखता है और अपनी भोग्य वस्तुओं को देखता है, और अपस्मृति जागृत देह को भूल जाता है, बेड पर पड़ा हुआ शरीर भूल जाता है, वो स्मरण नहीं रहता है, इसको अपस्मृति। अपगता जागृत देह स्मृति जस स, जागृत देह की या बेड पर पड़े हुए देह की स्मृति को भूल जाता है और एक नए देह की स्मृति में वो डूब जाता है, उसमें लगा रहता है। तब देखिए सपना किस तरह से जन्म और मृत्यु के रहस्य को प्रकट करता है। भगवान ने भागवत में कहा है उद्धव जी से, जन्म तोर वय कस्यचिद हे तोर मृत्यु अत्यंत विस्मृति हे, जन्म स्वात्मकयापुंस सर्वभावे न भूरिद विषय स्वकृतिं प्राहुर स्वप्नम स्वप जथा स्वप्न मनोरथः। भगवान भी वहां उदाहरण दे रहे हैं, जन्म क्या, जन्म का क्या अर्थ है और मृत्यु का अर्थ भी। जंतुर वह कष्ट चीज है तो मृत्यु अत्यंत विस्मृति, मृत्यु क्या है, जब जीव आत्मा किसी भी कारण से कष्टचित है तो, चाहे हेतु जो भी हो, चाहे दुर्घटना हो, बीमारी हो, जो कुछ भी हो, भगवान ऐसा कहते कष्टचित है तो, कोई भी हेतु हो, लेकिन जब इस देह को आत्मा पूरा पूरा भूल जाता है, इसका स्मरण नहीं करता है, तो इसी को मृत्यु कहा जाता है, अत्यंत विस्मृति। ऐसे तो हम लोग रोज विस्मृत होते हैं शरीर को, सोते हैं गाढ़ निद्रा में तो इस देह को भूल जाते हैं, लेकिन आत्यंतिक विस्मृति नहीं होती है, जगते हैं तो फिर इसी की स्मृति हो जाती है, फिर हम इसको मानते हैं कि अरे मैं ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा, सो करके रोज उठते हैं। बल्कि हम लोग भूलना चाहते हैं इस देह को, चाहते हैं कि हमको गाढ़ निद्रा आ जाए, इसको पूरा भूल जाए, चाहते हैं ना, हम में से प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमको गाढ़ी निद्रा आ जाए, अच्छी निद्रा आ जाए। अच्छी निद्रा का मतलब क्या है कि हम इस देह को पूरा पूरा भूल जाए। लेकिन आप जरा विचार कीजिए, एक दिन ऐसा समय आता है जब जीव वास्तव में शरीर को भूलता है लेकिन सदा के लिए भूल जाता है, तो आत्मा नहीं मरता है, उस शरीर को अत्यंतिक विस्मृत हो जाता है, इसी को तो मृत्यु कहा जाता है, फिर इस देह में वो लौटता नहीं, इसको आत्मा के रूप में अहम बुद्धि करके। ये समझने का प्रयास करना चाहिए, हम सबके साथ ये सिद्धांत लागू है, हम भी आत्मा हैं और हम भी इस तरह शरीर में जन्म लिए हैं और शरीर छोड़े हैं और आगे भी शरीर छोड़ेंगे। तो भगवान मृत्यु की परिभाषा डिफिनेशन दे रहे हैं भागवत में, मृत्यु है क्या, इस शरीर को आत्मा जब पूरा पूरा भूल जाता है इसको मृत्यु कहते हैं। तो ऐसे तो हम लोग रोज मर मर करके देख रहे हैं, हम लोग रोज सोते हैं, कोई कोई आदमी सोता है मान लीजिए 8 घंटा सोता है, बहुत ज्यादा सुतक्कड़ होगा तो 8 घंटा सोएगा, ज्यादा सोएगा तो 8 घंटा सोता है, 8 घंटा सोता है। और मान लीजिए वह व्यक्ति 90 वर्ष जिए तो 24 घंटे में 8 घंटा सोया तो उसके सारे स्लीपिंग आवर्स को कंबाइन करेंगे तो 30 वर्ष तक तो अखंड सोया रहा है ना, 8 घंटा रोज जोड़िए 90 वर्ष, 30 वर्ष तक वो अखंड सोया रहा, इसका मतलब 30 वर्ष तक उस देह को भूला रहा, यदि खंड खंड भूला रहा 8 घंटे के बाद जग करके जागृत होकर के फिर देह की याद करते। लेकिन कदाचित मान लीजिए सारे विस्मृति के घंटों को समय को एक जगह किया जाए तो व्यक्ति 30 वर्ष तक अखंड सोया, इसी देह में रहते हुए जब इस देह को भूला है तो इस देह को छोड़ करके इसको भूल जाएगा, इसमें कौन आश्चर्य की बात, इस देह में रहते हुए हम लोग भूले हैं इस देह को, रोज भूलना चाहते, विस्मृत होना चाहते। यह कोई अन्य व्यक्ति के विषय में बात नहीं कही जा रही है, वास्तव में ये सब हम लोगों की स्थिति है। जब हम रोज भूल ही रहे हैं 8 घंटा के लिए तो सदा के लिए भूल जाएंगे, इसमें आश्चर्य क्या है, मरण थोड़े होता है आत्मा का। लेकिन आदमी हाय हाय करने लगता है जब वो जीवात्मा सदा के लिए देह को भूल जाता है, हाय रे परिवार क्या क्या, जब रोज सो ही रहा था भूल रहा था उसमें क्यों नहीं हाय हाय किया उसमें तो बल्कि थपथपा करके सुनाया जाता है कि सो जाओ भूल जाओ। आत्यंतिक विस्मृति को मृत्यु कहा जाता है इस शरीर, ठीक है। तो अब अपना अपना जोड़ कर देखना चाहिए कि हम इस देह में रहते हुए इस देह को कितना देर भूले रहे, कई वर्षों में जाएगा, एक दो महीना या एक दो वर्ष नहीं, अगर स्लीपिंग आवर्स को जोड़ा जाए, टाइम को जोड़ा जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और यदि यह कहा जाए जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जीव जागर बोला बोल ले, तो कुछ लोग ये समझ सकते हैं जीव सोया कहा है कि जगाया जा रहा है, जो जागृत अवस्था है वो अभी वास्तव में सोई हुई अवस्था है, वो तो एक अलग सिद्धांत है। लेकिन स्थूल निद्रा को भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा जीव सो रहा है, यहां तक भागवत की कथा में भी सोने लगता है, ये जीव की दशा है जीव की यह परवस्था है, सोता रहता है, भूलता रहता है, भूलता रहता है। कोई बाहरी शक्ति है, कोई ऊपरी शक्ति है जो जीव को देह की विस्मृति कराती है, और वो शक्ति और कोई नहीं, स्वयं भगवान कराते हैं। मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, अपोहनम का अर्थ विस्मृति, भगवान विस्मृति देते हैं कृपा करके, नहीं तो सदा याद रखेंगे तो पागल हो जाएंगे। भगवान निद्रा दे देते हैं, कुछ देर भुलवा देते हैं कि ये सब चिंता से दूर हो जाए, भगवान कृपा करके हृदय में बैठे हैं, कभी स्मृति देते हैं काम करने की, खाने पीने की, और कभी कभी आराम के लिए विस्मृति दे देते। सदा जीव याद रखे तब तो ऐसे ही मर जाएगा वो इस फिक्र से चिंता से तबाह हो जाएगा। तो भगवान समय समय पर विस्मृति देते हैं, निद्रा आदि दे देते हैं। कोई बहुत दुख होता है तो आदमी कहता है भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ, याद मत करो। विस्मृति भी बहुत जरूरी है, आवश्यक है, ये भगवान देते हैं। लेकिन एक दिन भगवान आत्यंतिक विस्मृति दे देते हैं, जिसको मृत्यु कहा जाता है। किसी भी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति के लिए 6 घंटा से अधिक सोने का विधान नहीं है। शरीर को भूलिए लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 घंटा। ऐसे जो लोग बहुत ऊंचा हो जाते हैं अध्यात्म में, वे तो एक क्षण भी नहीं भूलते, एक क्षण भी नहीं भूलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि देह को मैं मान करके जगे रहते हैं, वो देह की भी स्मृति नहीं करते हैं, वो तो भगवान के भजन में लगे रहते हैं, सोते नहीं है रात में या दिन में, कभी दिन में तो सोने का प्रश्न ही नहीं है, रात में भी नहीं सोते। जैसे सद गोस्वामी के विषय में वर्णन है कि वे कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटा सो लेते थे, और नाम संकीर्तन से हमें कौन दिन है, और किसी किसी दिन इतना आवेश होता था नाम संकीर्तन का जप का कि वो 1.5 घंटा भी नहीं सोते थे। निद्रा हार विहार काद विजितम, निद्रा को जीत लिए थे, आहार को भी जीत लिए थे, बहुत थोड़ा खाते थे, कभी कभी वो भी नहीं खाते थे। शुष्क रोटी चना चिबाए भोग परिहार, सुख चना या सुखी रोटी चबा दी, चबा लेते थे किसी ने, बिना नमक के भी लाते थे रोटी, और खाए इंजन डाल लिया और उसके बाद भोजन कर रहे। इस तरह से जो अध्यात्म उन्नत हो जाता है व्यक्ति कम सोता है। खैर ये तो अलग बात हुई, यहाँ पर हमें पहले मृत्यु और जीवन को समझना है। मृत्यु है क्या? मृत्यु है शरीर को आत्यंतिक रूप से भूल जाना। जन्म क्या है? अपस्मृति जो शब्द यहाँ दिया गया है उस श्लोक में, वो है मृत्यु का सूचक। ठीक है, भूल गए देह को, और जन्म को कैसे स्वीकार करें? मान लीजिए कंस पूछे कि हम कैसे समझें कि आत्मा का जन्म होता है, तो जन्म स्वप्ने यथा पश्यति देह में दृश्यं, इससे तात्पर्य हममें से प्रत्येक व्यक्ति सपना देखता है। कोई इस सभा में बैठा है जो कभी सपना नहीं देखा है? कोई ऐसे नहीं है, सब सपना देखते रहते हैं। भगवान ने सपने की फैसिलिटी सभी जीवों को दिया है, मनुष्यों को। सपना अपने आप में झूठा है, लेकिन सत्य को समझने के लिए बहुत सहायक, सत्य को समझने के लिए सहायक। सपना से बहुत उदाहरण दिया जाता है, अपने आप में झूठा है लेकिन सहायक है सत्य के रियलाइजेशन। तो अब देखिए, जब सभी सपना देखते हैं तो ये व्यक्तिगत अनुभव से आप जान सकते हैं। मान लीजिए रात में सोते समय यदि गाढ़ी निद्रा नहीं आई, अर्ध निद्रा आई, और उस अर्ध निद्रा में आप स्वप्न देख रहे हैं, तो स्वप्न देख रहे हैं तो सपना में क्या देखते हैं? एक नया देह देखते हैं और उसी को मैं मानते हैं। वह देह कीमती, चाहे पशु का हो, पक्षी का हो, कीट पतंग कुछ भी हो, या जागृत देह जैसा ही कुछ देह हो सकता है। जैसा हम जागृत देह में वैसे मान सकते हैं, हम ये है वैसा, यहाँ खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से सपना देखते हैं, तो ये देह तो भूल चुके हैं, तो मृत्यु से सदृश दिया गया है, और जन्म से सदृश बताने के लिए बता रहे हैं स्वप्न में, स्वप्न में जैसे देह देख रहे हैं। तो हम लोग मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन 24 घंटे में 4 घंटा सपना देखा, मान लीजिए 4 घंटा सपना देखा, तो सपने का अर्थ है कि इस देह को भूल करके दूसरे देह में वह है, उसको आत्मतया स्वीकार कर रहा है कि मैं यह हूं। तो 4 घंटा उस सपना देखा और मान लीजिए वह 90 साल जिया, तो 15 वर्ष तक वह दूसरे जन्म में रहा, दूसरे शरीर में रहा। सपना के सभी घंटों को एक जगह जोड़ेंगे, 15 वर्ष तक इस शरीर में रहते हुए ही वह दूसरे जन्म में था, दूसरे शरीर में था। सपना को समझने वाले लोग बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। हम इस देह में रहकर भी क्या किए, जब हम सपना में दूसरे देह को मैं माने और वहां पर मेरा माने, किसी वस्तु को मेरा माने, जैसे मान लीजिए सपना में किसी व्यक्ति का विवाह हो गया, सपने में मान लीजिए विवाह हो गया, वो जागृत में देखा किसी का विवाह और सुना, संस्कार पड़ गया हृदय पर और बेचारा सपने में देख रहा है कि मेरा विवाह हो गया। तो सपने में अपने वर शरीर को, दुल्हा शरीर को देखेगा, मानेगा मैं ऐसा हूं, और इसके साथ स्वाप्निक कुछ उसका संबंध होगा, स्वाप्निक पत्नी मिलेगी और स्वाप्निक बच्चे भी हो जाएंगे, और स्वाप्निक घर बाथरूम जो भी है, बक्सा कपड़ा आदि सब कुछ। तो अपने को मैं मानेगा और सपने में देखी हुई वस्तुओं को मेरा मानेगा, मानेगा ना। तो इसको प्रपद्य मान इस श्लोक में कहा, स्वप्ने यथा पश्यति देह निदृशम मनोरथेनाभिनिविष्ट चेतन दृष्ट श्रुताभ्याम मनसानुचिंतयन प्रपद्यते तत् किमपि यस्पस्मृति प्रपद्यते। उसी सपना के देह को मैं मानता रहता है और सपने में देखी हुई वस्तुओं को मेरा मानता रहता है। तो जीवन का मतलब क्या, जन्म का क्या मतलब है, किसी देह को मैं मानना और देह से संबंधित वस्तुओं को मेरा मानना, यही जन्म है। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है जन्म को समझने में? कोई व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि जीवन जन्म क्या है, मरण क्या है। आत्मा नहीं मरता है, आत्मा केवल स्वीकार करता है और परित्याग करता है, एक देह से परित्याग करता, परित्याग तो नहीं कर पाता है लेकिन विस्मृत हो जाता है। परित्याग करते हैं उच्च कोटि के योगी जन, भक्त जन, जैसे भीष्म पितामह ने देह का त्याग किया, त्याग करते हैं। लेकिन अन्य जो जीव हैं वो किसी भगवान की शक्ति द्वारा विस्मृत करा दिए जाते हैं, भूल जाते हैं देह को और दूसरे देह को मेरा मानते हैं। तो ये है जन्म और मृत्यु का रहस्य, कौन से को ये फिलॉसफी समझाई जा रही है, परंतु उसकी श्रवण मुद्रा जो है वो अद्भुत है। भगवान के पिताजी समझा रहे हैं और भगवान की जो मां होने वाली है उसको श्रवण करने वाला मारना चाहता है। यह देखिए स्थिति, इसीलिए लास्ट में बताया गया कि कौन कुछ नहीं समझा। वसुदेव जी अपनी समाज से तो बहुत उच्च कोटि का दर्शन प्रस्तुत कर रहे थे लेकिन नहीं समझे। हम लोग भी प्रचार में भागवत की कथा कहते हुए देखे हैं कि जब फिलॉसफी कहते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी फिलॉसफी हो, तो कुछ लोगों का दिमाग एकदम ऑफ हो जाता है, छोड़ देता है, ये क्या कह रहा है। कभी कभी तो कंप्लेन आता है कोई कथा नहीं आ रही है, कोई कथा कही है, ये क्या कह रहे हैं। आप देखिए क्या भगवान कृष्ण अर्जुन के पास हुए तो कथा चालू किए, फिलॉसफी चालू किए, भगवद्गीता 17 अध्याय में फिलॉसफी फिलॉसफी, केवल पहले अध्याय में थोड़ी सी कथा है कि अर्जुन किस तरह से सेना को देखे और शोकाविष्ट हो गए, ये हो गए वो हो गए। और वास्तव में जो अग्रेसर वैष्णव जन होते हैं, भक्त होते हैं, वो भक्ति सिद्धांत को बहुत अधिक सुनते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सिद्धांत बलिया चित्त न कर अलस, यह है ते लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। ये सिद्धांत है, सिद्धांत है, शुष्क है, ऐसा कह करके मन में आलस्य मत करो, इसको सुनो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जो ध्यान में नहीं आना, शायद कृष्णदास कविराज गोस्वामी, सिद्धांत बलिया चित्त न कर अलस, यह है ते लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। सिद्धांत सुनने से ही कृष्ण में मन लगेगा, और ये सब कथा सुनने से कि वैसे रासलीला में नाच रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इसको सुनने से होगा क्या, ऐसे मन नहीं लगेगा, सिद्धांत सुनना चाहिए। तो यहां पर सिद्धांत सुनाया जा रहा है। एक दिन हम लोग भी शरीर छोड़ेंगे, छोड़ चुके हैं, ग्रहण करेंगे दूसरा शरीर, तो अपनी स्थिति को समझना आवश्यक है ना, हम कौन हैं। बहुत सुंदर तरीके से श्रील वसुदेव जी समझा रहे हैं कंस को। तो कंस फिर प्रश्न किया, ठीक है, ननु विचित्र देह हेतु नाम कर्मणाम, देह विशेष प्राप्त किम कारण। कंस पूछ रहा है, वो भी तो संस्कृत ही बोलता होगा उस समय, आज से 5000 वर्ष पहले सभी लोग संस्कृत बोलते थे। जीव तो बहुत बहुत कर्म किया है, कंस पूछ रहा है, सुनने लगा ध्यान से, उसी तरह से देवकी की चोटी पकड़ा है, हाथ में तलवार लिया है और सुनने लगा, प्रश्न भी करने लगा कि जीव तो बहुत बहुत कर्म किया है, विचित्र देह हेतु नाम कर्मणाम, बहुत बहुत देह मिलेंगे, एक एक जीव इतना इतना कर्म करता है, इतना इतना मनोरथ होता है कि उसको भोगाने के लिए उसको बहुत बहुत देह की प्राप्ति कराई जाती है, लेकिन जब बहुत बहुत देह प्राप्ति के कारणभूत कर्म किया है तो एक खास एक समय में एक देह प्राप्ति का कारण क्या होता है, कोई विशेष देह उसको प्राप्त होता है, इसका क्या कारण है, सब देह एक साथ क्यों नहीं मिलते हैं, एक विशेष देह क्यों मिलता है उसको। तब श्रील वसुदेव जी उत्तर देते हैं, जतो जतो धावति दैव चोदितम मनो विकारात्मक माप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सहते न जायते। वे उत्तर देते हैं, कहते हैं कि दैवेन जतो जतो धावति दैव चोदितम, दैवेन फलाभिमुखेन कर्मणा चोदितम प्रेरितम मनः जतो जतो यमजन शरीरम प्रति धावती धावत सत जत जत प्रपद्यमान अहम इति मन्यमान तत्र तत्र स जायते। जीव है के साथ मन है, मन करण है और जीव करता है, करण का अर्थ है करण सहायक। तो जीव है का एक बंधन, वास्तविक बंधन है मन, यह स्थूल शरीर तो छूट जाता है लेकिन जब तक मन रहता है तब तक उसको फिर दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, असली बंधन और वास्तविक शरीर है आत्मा का मन, सूक्ष्म शरीर। तो इसीलिए वसुदेव जी यहां कहते हैं कि दैव चोदितम मनः, दैव के द्वारा प्रेरित मन जमजम जतो जतो धावती दौड़ता रहता है, मन तो ऐसे आत्म विकारात्मक है, चंचल है, अभी मन कहाँ है, किस वस्तु का चिंतन कर रहा है और क्षण भर में किसी दूसरे का चिंतन करने लगता है, सो विकारात्मक कहते हैं, विकारात्मक मन, विकार। विकार के दो अर्थ होते हैं, एक तो प्रकृति के विकार और दूसरा मानसिक विकार। मानसिक विकार से तात्पर्य है मन क्षण भर में किसी को अनुकूल मान लेता है, प्रतिकूल मान लेता है, आज यहाँ टीका है क्षण भर में वो दिल्ली जा सकता है, सपना में कुछ और देखने लगता है, क्षण क्षण में चलायमान है, चंचल है मन, चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थ बलभद्र है, इसको विकारात्मक कहते हैं। अभी मन में काम है तत्काल क्रोध हो सकता है, लोभ हो सकता है, कभी सो सकता है, कभी किसी के प्रति प्यार हो जाएगा और उसी व्यक्ति के प्रति कभी बहुत क्रोध हो जाता है, मन ऐसा होता है। जैसे हम लोग ने देखा है कोई मनुष्य अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है लेकिन कुछ दिन के बाद या किसी से कहता है तुम उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रही हो, मेरे सामने से हट जाओ पहले, बाद में देखेंगे। दो एक घंटे के बाद फिर स्थिति ठीक हो जाती है, मन इस तरह से चंचल विकारात्मक मन है। और इस मन को प्रेरित कौन करता है? दैव। दैव का अर्थ सिद्ध स्वामी जी करते हैं फलाभिमुख कर्म। वह कर्म जो फल देने वाला है, तो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म इस जीव के मन को प्रेरित करते हैं, प्रेरित करते हैं, परवश है, इसमें प्रयास नहीं करना पड़ता है मन को, मन अपने आप चला जाएगा, क्योंकि पीछे कर्म है, कर्म उसको प्रेरित करता है विविध वस्तुओं के चिंतन में, जो देखा है सुना है उन्हीं का चिंतन करता रहता है, इधर उधर जाता रहता है, दौड़ता रहता है, कभी देवता कभी मनुष्य कभी पशु कभी पक्षी का चिंतन करता है, किसी वस्तु को मानता है वस्तु मेरी हो जाए तो बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, इसको धावती कहते, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, धावती। धावती बहुत वेग से भागता है प्राकृत वस्तुओं के प्रति। और दैव का एक अर्थ यह भी है ईश्वर, श्री भगवान। श्री भगवान ने मन को प्रेरित कर देते हैं, लेकिन उसका अर्थ कर्म सापेक्ष भगवान, जीव के कर्म के सापेक्ष भगवान, मतलब जीव के कर्म को देख करके उसके मन को चालित करते हैं भगवान। यह इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है कि भगवान का सोचना या कर्म का हिसाब देखना और मन का दौड़ना दोनों एक साथ होता है, देर नहीं होती है। तो प्राचीन कर्म जीव का जो अदृष्ट कहा जाता है, हमको पता नहीं है कि हमने पूर्व जन्म में क्या क्या कर्म किया है, बहुत बहुत जन्मों में कौन कर्म का फल कब आने वाला है, ये हमको पता नहीं होता है। इसलिए संस्कृत में प्रारब्ध को या कर्म कोष को अदृष्ट कहा गया, अदृष्ट, कुछ पता नहीं कौन कर्म आएगा और हमारे मन को कैसा बना देगा, हमारा मन कहाँ जाएगा, हमारी क्या स्थिति होगी, कोई पता नहीं है। फलाभिमुख कर्म को दैव कहा जाता है, दैव मन को प्रेरित करता है और मन भिन्न भिन्न वस्तुओं में भागता चलता है, भागता चलता है, भागता चलता है, कभी देवता का चिंतन, कभी मनुष्य का, कभी पशु पक्षी का, और उसमें भी किसी को मेरा मानता है, किसी वस्तु को कि ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, विभिन्न मनोरथ करता रहता है, मैं इस पोस्ट पर हो जाता, मैं वहां जीत जाता, मैं ये होता, मैं ऐसा करता, ये करता, ये सब चिंतन होता रहता है। लेकिन चिंतन करते 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 पंचत्व देह त्याग के समय, जो पंचत्व का समय आता है, देहस्य पंचत्व, पंचत्व का अर्थ होता है मृत्यु। यह शरीर पंच महाभूतों से बना है, भूमि जल अग्नि वायु और आकाश, इन पांच के सम्मिश्रण से यह देह बना है। और देह के पांचों पदार्थ जब एक दिन खुलते हैं, विश्लेषित होते हैं और अपने अपने कारण में चले जाते हैं, तो इसको पंचत्व कहा जाता है। ये संस्कृत में पंचत्व का अर्थ मृत्यु किया जाता है, पंचत्व, पंच तत्व से बना हुआ शरीर है और पांचों तत्व फिर बिखर करके अपने अपने कारण में, अपने अपने स्टॉक में जुट जाते हैं, इसलिए इसको पंचत्व कहते हैं। तो पंचत्व के समय मन जिस शरीर का चिंतन करता है, जिस देह गेह का चिंतन करता है, ठीक अगर पंचत्व के समय जिस देह का चिंतन करता है तो वही देह वह प्राप्त करता है, उस देह के साथ इसे जन्म लेना पड़ता है, उस देह के साथ मन जन्म लेता है। एक प्रश्न होता है कि मन चिंतन करता है तो मन उस शरीर के साथ जन्म ले, आत्मा क्यों जन्म लेता है? तो प्रपद्य मानस सहते न जायते, क्योंकि आत्मा के साथ इस प्रपत्ति, मन के साथ प्रपत्ति किया है, मन को अपने से भिन्न नहीं देखता है आत्मा, मन को ही मैं मानता है, इसलिए मन जहां जन्म लेता है वहां इसको भी जन्म लेना पड़ता है, मन जिस शरीर में आएगा उस शरीर में आत्मा को जाना पड़ता है, सहते न जायते। तो चूंकि पंचत्व के समय अंतिम क्षण में वह एक ही शरीर का चिंतन कर पाएगा, इसीलिए उस शरीर में उसे जाना पड़ता है, और जिस शरीर का चिंतन करेगा उसी में हो जाता है। ईश्वर का यह विधान है। ठीक वैसा है जैसे मान लीजिए कोई फोटो खींच रहा है, फोटो उपाड़ रहा है, तो लास्ट में जब वो क्लिक दबाएगा तो दृश्य जैसा रहेगा वैसा आ जाएगा। लास्ट समय में कभी कभी कहता है फोटोग्राफर की जरा हंसिए, तो वो व्यक्ति जो पहले मुस्कुराता रहता है वो और गंभीर हो जाता है। तो कभी कंप्लेन करता है फोटोग्राफर से, ऐसा फोटो क्यों आ गया मेरा, लास्ट में आप ऐसे ही थे इसलिए ऐसा आ गया। इस संसार में वास्तव में कोई सुख नहीं है, हंसी नहीं है, इसलिए कहना पड़ता है कि मुस्कुराइए हंसिए, कभी कहना नहीं पड़ता है कि बहुत दिन खुश रहे अब रोइए या दुखी होइए। इस संसार में दुखी होना रोना स्वाभाविक, मुस्कुराने के लिए कहना पड़ता है। कहीं कहीं तो घर में लिख करके टांगते हैं सदा मुस्कुराई, सदा मुस्कुराएगा क्या बेचारा लाखों चिंता में है वो क्या मुस्कुराएगा। सहज मुस्कुराहट भगवान कृष्ण के मुखारविंद पर होती, सहज उनको कोई दुख नहीं, सदा हंसते रहते हैं। भगवान इतना प्रसन्न रहते हैं कि महाभारत युद्ध में कुछ विपक्ष के शत्रु रण चिढ़ जाते थे और भगवान की हंसी देखने में तल्लीन रहते थे। ऐसे लिखा गया है कि अर्जुन बाण तानते थे और वे लोग भगवान के सारथ्य कला को देखते थे, देखते रह जाते थे, और देखते देखते अर्जुन बाण से मार देते थे, उनका गला कट जाता था। तो इस तरह से भगवान का मुखारविंद देखते हुए मरते थे। तथा वचान में नरलो कबीरा यह आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्र पिबंतो नैनाभिरामम पार्थास्त्र पूता पद्मापुरस्य। पार्थास्त्र पूता, पार्थ के अस्त्र से पवित्र हो जाते थे, महाभागवत का अस्त्र जाता था और उस समय वे भगवान के मुख पर देखते थे। लड़ने की चिंता नहीं उन्हें होती थी, भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा करते थे और उसी समय उनका शरीर नष्ट किया जाता था। तो डायरेक्ट भगवान के पार्षद बनते थे वे लोग, शत्रु होते हुए भी। पदम आपु अस्य, अस्य पदम आपु, भगवान का धाम प्राप्त करते थे। तो जहां युद्ध छिड़ा है, मार काट छिड़ी है, वहां भी भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट। और वृंदावन आदि में तो कहना ही क्या, वहां तो पूर्ण आनंद में। लेकिन बाकी और आदमी के मुखमंडल पर मुस्कुराहट नहीं रहती, ये हास्य मंद मुस्कान वास्तव में भीतर के आनंद का द्योतक होता है। हाँ, तो मैं यह कह रहा था कि जैसे कैमरे में फोटो आता है, लास्ट में जो स्थिति रहती है, अंते या गति या अंते या मति सा गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी गति होती है। यमजम वापि स्मरण भावम रजन तुंते कलेवरम तम तमय वायती कौंते सदा तद्भाव भावित। तो यही बात भगवान के पिताजी भी बोल रहे हैं। ये पुत्र और पिता इस विश्व को ज्ञान देने पर पड़े हुए हैं, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य से ग्रस्त जगत, कोई ज्ञान नहीं ले रहा है। वो गीता में बोल करके ज्ञान गए, ये पिताजी भागवत में ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं। कल बातचीत हो रही थी तो एक व्यक्ति हमसे कहे कि आप इतना विस्तार से वसुदेव जी का उपदेश कह रहे हैं, इसको तो मैंने पहले किसी भी वक्ता के मुख से नहीं सुना। तो इस पर चर्चा हो रही थी कि आप बहुत कम कथा कह रहे हैं। मैं तीसरा दिन चलने लगा, अभी एक अध्याय भी पूरा नहीं हुआ और होगा भी नहीं, आज नहीं पूरा होगा, दूसरे सिटिंग में भी। लेकिन जो कुछ भी हो, हमें तो प्रभुपाद जी के चरणारविंद पर चलना है, उनके आदेश पर चलना है। कभी कभी लोग बहुत कटाक्ष करते हैं कि क्या भागवत सप्ताह है, इसमें रुक्मिणी हरण नहीं आया, बलि महाराज महाराज का नहीं प्रसंग आया और नहीं आया, कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। ये भागवत सप्ताह ज्ञान प्राप्ति के लिए, भक्ति की प्राप्ति के लिए है। वास्तव में प्रभुपाद ने जैसा हम लोगों को सिखाया है, हम लोग भाई वैसे चल रहे हैं। हमको भी अनुभव होता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत युग जैसा बीत रहा होगा कि अरे ये कब तक कथा चलती रहेगी, फिलोसफी कुछ कथा तो आगे दो, देवकी को छोड़ा कि नहीं छोड़ा ऐसी बात आती है और इतनी देर तक बेचारी को पकड़वाए रखना ये उचित नहीं है। तो अंततः तो छूट ही जाएगी, कोई शोक की बात नहीं है, लेकिन देवकी को पकड़ा है कौन से, उससे ज्यादा पकड़ माया की है हम लोगों के ऊपर, उसको छुड़ाना है इस कथा द्वारा, वो देहात में बुद्धि छुड़ाना है आवश्यक है। तो क्यों किसी देह विशेष की प्राप्ति होती है आत्मा को, उसको श्री वशदेव जी समझा रहे हैं। ऐसे जीवन काल में मृत्यु से पहले तक तो जीव लाखों लाखों शरीर का चिंतन करता है, विषयों का चिंतन करता है और उसी को मैं मानता है, लेकिन घूमता रहता है घूमता रहता है। पंचत्व के समय, शरीर छूटते समय जिसका चिंतन करता है वही शरीर दिया जाता है। और चूंकि मन के साथ तादात्म्य किया है, मन को ही मैं मान रहा है, इसलिए मन जब जन्म लेता है दूसरे अस्थूल शरीर में तो वहां इस आत्मा को भी जन्म लेना पड़ता है। सहते न जाए तेन मनसा करणे न सह जाए, मन के साथ वहां जन्म लेता है। कंस इस बात को समझ रहा था तो फिर प्रश्न करता है, प्रश्न नहीं वह अपना विचार दिया है कि ठीक है मैं आपकी बात, मेरा मन मैं समझ रहा हूं कि देह छूटेगा नश्वर है और दूसरा देह मिलेगा, लेकिन इस प्रकार का राज देह कहां मिलेगा। राजा का देह मिला है तो मैं मनमाना खा रहा हूं पी रहा हूं, रथ पर हाथी पर घोड़ा पर घूम रहा हूं, खाने के विषय में क्या कहा जाए, विविध भोग मुझे प्राप्त हो रहे हैं, फिर स्त्री सुख प्राप्त हो रहा है और सब प्राप्त हो रहा है, हाय रे ये राजा का देह समाप्त हो जाएगा और बिल्कुल अधम तुच्छ देह मिलेगा, कहीं सुअर आदि का देह मिल गया तो मैं तो घाटा में पड़ जाऊंगा। इसलिए इस राज देह की रक्षा अगर पाप करने से भी हो तो मैं करना चाहता हूं, यही उसकी समझ थी। वो कहता है मैं फिलॉसफी समझ गया हूं, लेकिन इस राज देह की रक्षा मैं पाप करके भी करूंगा क्योंकि इससे मैं बेटर भोग भोग सकता हूं। सुअर बन जाऊंगा तो हाय रे, न मुझे ग्रहने के लिए घर न खाने के लिए कुछ भी नहीं समझ, इसलिए मैं इस हानि को नहीं सहना चाहता हूं, किसी तरह रहने दीजिए मुझे, मैं इसको मार करके और इसी देह में रहूंगा। तो वसुदेव जी समझाते हैं कि राजा कंस वास्तव में कोई भी देह एक समान है, देह देह में कोई भेद नहीं है, इस फिलोसफी को समझा रहा है इस अगले श्लोक में। ज्योति जथक पार्थिव स्वद समीर वेगानुगतम विभाव्यते गुणेश एवं स्वमाया रचते स्वसौपमान गुणेश रागानुगत विमुह्यते। संस्कृत रचना है लेकिन वास्तव में बहुत सुगम है, एक एक बात समझ में आ रही है क्लियर। तो जब कंस ने यह कहा कि इस प्रकार का राज देह कहां मिलेगा, फिर बहुत कुत्सित देह मिल जाएगा, फिर हमको भोग नहीं मिलेगा, हमको ये नहीं मिलेगा, इसलिए अकार्यम अति कृत्वा नहीं करने जो काम, अर्थात भग्नि बध रूप पाप करके भी अगर मैं कुछ दिन ज्यादा जी जाऊं शरीर में तो ये ठीक है। वसुदेव जी कहते हैं कि नहीं, यह गलत। देखिए शरीर में कोई भेद नहीं है, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। हम भक्तों को आवश्यक है यह सिद्धांत जानना। हम लोग जानते हैं कि देह आत्मा नहीं है और आत्मा देह नहीं है, आत्मा से देह पृथक है, परंतु किस तरह से पृथक है और क्यों देह में आत्मबुद्धि हो जाती है, यह बात इसमें समझाई जा रही है। आत्मा चिन्मय है, ज्ञानमय है और आनंदमय है और नित्य है। यह आत्मा की स्थिति है, सच्चित आनंद। सत्य का अर्थ है कि यह नित्य है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। आत्मा में मृत्यु नहीं है, आत्मा में शुरुआत नहीं है, प्रारंभ नहीं, यह आत्मा की विशेषता है। और शरीर का प्रारंभ है और शरीर का अंत भी है। अच्छा, आत्मा की एक और विशेषता है कि आत्मा चिन्मय है, चित्तमय, ज्ञानमय है, चेतन, पूर्ण चेतन है। नक्ष सिख तक आत्मा चेतन है और यह शरीर जड़ है, यह चेतन नहीं है। इसमें आत्मा की चेतना जब आती है तब चेतनीभूत होता है। हमारा हाथ तब हिल रहा है जब मैं इसमें हूं। जिस दिन मैं इस देह को छोड़कर चला जाऊंगा, हाथ हिल नहीं सकता, आंखें देख नहीं सकती। तो देह में चेतना नहीं है, अचित है, आत्मा चिन्मय है। अच्छा, तीसरी विशेषता आत्मा की है कि आत्मा आनंदमय है, आनंदमय अभ्यास, आनंदमय है। जैसे भगवान आनंदमय है, वैसे आत्मा भी अपने आप में आनंदमय है, लेकिन देह आनंदमय नहीं है, यह दुखमय है। तो जब जीव जिस देह में जाता है, जिस देह में रहता है, होता क्या है कि आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का जो धर्म है, चिन्मयता, ज्ञानमयता और नित्यता, ये जड़ देह में रिफ्लेक्ट होती है। आत्मा की तीनों विशेषता उस देह में प्रतिबिंबित होती है। यदि देह जड़ है, निरानंद है और अनित्य है, लेकिन चूंकि आत्मा नित्य है, आनंदमय है, ज्ञानमय है, तो आत्मा का जो गुण है वो देह में टकराता है। जिस देह में आत्मा रहता है उस देह में इमीडिएट, जैसे मान लीजिए आप किसी बर्तन में एक आग का गोला रखिए, अग्नि रखेंगे किसी बर्तन में, लोहे के बर्तन में, तो आग का धर्म है उत्तप्त रहना, उसमें आंच रहती है, ताप रहता है। जिस बर्तन में वो अग्नि रखा जाएगा तो उस बर्तन को भी अपनी आंच देता है, बर्तन भी गर्म हो जाता है। ये हम सब का अनुभव है। यदि बर्तन में जो गर्मी आई है वो अपनी गर्मी नहीं है, अपना ताप नहीं है, वह अग्नि का ताप है, लेकिन चूंकि वह अग्नि उस समय उस बर्तन में रखा गया, इसलिए अग्नि का जो धर्म है ताप, वह बर्तन में संश्लिष्ट हो जाता है, प्रवेश करता है। तो आत्मा नित्य है, चिन्मय है, आनंदमय, इसलिए आत्मा जब जिस देह में होता है तो वही देह नित्य दिखाई पड़ता है। ये आत्मा का नित्यता धर्म उस पर रिफ्लेक्ट होता है। देह नित्य हो नहीं जाता है, लेकिन कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि नित्य है, आनंदमय है और चिन्मय है। चेतना आ ही जाती है देह में, चेतना तो रहती ही है, और देह को देह कर या खिला कर पहना करके ऐसा लगता है कि देह आनंद दे रहा है। इस देह से हम कुछ खाते हैं तो हम सोचते हैं देह हमको आनंद दे रहा है, जिह्वा हमको आनंद दे रही है। इस देह से किसी को छूते हैं तो लगता है आत्मा को कि देह हमको आनंद दे रहा है, या दूसरे का देह हमको आनंद दे रहा है। वो आनंद दे नहीं सकता। कोई दूसरे देह को छू करके कोई व्यक्ति अगर आनंद प्राप्त कर रहा है तो वास्तव में वह जो छू रहा है वह उस देह में जो आत्मा है उसके कारण आनंद की अनुभूति हो रही है। जिस दिन आत्मा देह को छोड़ जाएगा और कोई कहे कि अब मुर्दा देह को छुओ, मृतक देह को छुओ और आनंद लो, तो क्या कोई छुएगा? क्योंकि अब पता चल गया कि जिस कारण से आनंद की प्रतीति हो रही थी वह तब तो उस शरीर को छोड़कर चला गया। किसी के भी देह को कोई चुंबन करके, आलिंगन करके या देह करके, सहला करके सुख ले रहा है तो सोच सकता है कि यह देह मुझे सुख दे रहा है, लेकिन देह सुख नहीं दे रहा है। उस देह के भीतर अवस्थित आत्मा से या भगवान से, परमात्मा से वो आनंद विकीर्ण होकर के आ रहा है, तब आनंद की प्रतीति होती है। अच्छा, चूंकि आत्मा प्रिय है वस्तु, प्रियता भी एक धर्म है, आत्मा का स्वभाव है, तो जिस देह में रहता है तो इसका प्रियत्व धर्म भी देह में रिफ्लेक्ट होता है, तो देह ही प्रिय लगता है। जिस देह में आत्मा जाता है वही देह प्रिय लगता है, क्योंकि आत्मा की नित्यता, प्रियता और आनंदमयता ये सब देह में रिफ्लेक्ट होते हैं इमीडिएट, इसीलिए देह सबसे प्रिय लगता है। तो जब आत्मा इस देह को छोड़ करके दूसरे देह में चला जाता है तो वही देह प्रिय लगने लगता है, यह देह अप्रिय नहीं लगता है, इसकी तो याद भी नहीं करता है। तो वसुदेव जी समझा रहे हैं कि कंस जी, आप जब सुअर के देह में जाएंगे तो सुअर का देह ही सबसे ज्यादा प्रिय लगेगा, क्योंकि आप उसके साथ रहेंगे, आत्मा रहेगा, और यह दृष्ट सिद्धांत है। आप चिंता मत कीजिए, आज आपको राजा का देह प्रिय लग रहा है, वसुदेव जी ऐसे सुअर आदि शब्द नहीं बोल रहे हैं, वहां स्थिति दूसरी है, सुनते ही बिगड़ जाता है। मैं क्लियर करने के लिए कह रहा हूं कि वो कह रहा है कि आप जब सुअर के देह में जाएंगे तो आपके साथ आपका धर्म जाएगा, आप जाएंगे तो आपकी विशेषता साथ में जाएगी, क्या क्या, आनंदमयता, नित्यता, ज्ञानमयता और प्रियता, ये सब आपके साथ जाएंगे, तो वही शरीर प्रिय लगेगा, वही नित्य लगेगा, वही अच्छा लगेगा, और आप इस देह को भूल जाएंगे, इसलिए चिंता मत कीजिए। अगर सुअर का देह मिलता है, चाहे पशु का देह मिलता है, पक्षी का मिलता है, तो वही देह बहुत प्रिय लगेगा। तो कंस इसको भी समझने लगा, हाँ ठीक समझ रहे हैं, लेकिन ठीक है शरीर तो प्रिय लगेगा, लेकिन इस देह में जो हमको मालपुआ या गुलाब जामुन आदि मिल रहा है, सुअर के देह में फिर सब नहीं मिलेगा। तो वसुदेव जी कहते हैं चिंता मत कीजिए, सुअर के देह में जो भोजन आपको मिलेगा वही सबसे प्रिय लगेगा, ये स्वभाव है देह का। आत्मा अलग अलग देह के प्रीति के अनुसार भोजन में प्रियत्व उत्पन्न होता है। जब सुअर का देह प्रिय होगा तो आपको ऐसा पदार्थ प्रिय लगेगा जिसको मनुष्य देखना भी नहीं चाहता है। आप चिंता मत कीजिए, और आपको पकाने उकाने की भी समस्या नहीं होगी, कोई खींचे नादे की जरूरत नहीं होगी, हम और ज्यादा सुखी हो जाएंगे इस दृष्टि से अगर देखा जाए। आप देखिए अलग अलग जीवों को अलग अलग भोजन प्रिय है, देह जैसा है उसके अनुसार ही भोजन प्रिय है। किसी किसी को मांस ही केवल प्रिय है, जैसे गिद्ध या सिंह, गिद्ध बेचारा मरा हुआ मांस खाता है और सिंह है पशुओं को मार कर देता है। और मनुष्य शरीर में ही देख लीजिए अलग अलग शरीर है, उसके अनुसार भोजन अलग अलग प्रिय है। कुछ ऐसे दूषित जीव हैं जिनको केवल मांस ही प्रिय लगता है, खून प्रिय लगता है, लोह रक्त प्रिय लगता है, और कुछ ऐसे हैं जिनको ये सब है चीजें लगती है, भगवान का प्रसाद खा उनको वो प्रिय लगता है। खैर भगवत प्रसाद तो देह के कारण प्रिय नहीं लगता है, वो तो आत्मा की प्रियता है, भगवान का प्रसाद। तो वसुदेव जी समझा रहे हैं कि जहां आप जाएंगे तो आपका धर्म, आपकी विशेषता उस देह में जाएगी, इसलिए वो देह प्रिय लगेगा, और उस देह के समुचित जो भोग है वही सबसे ज्यादा प्रिय लगेगा, और जो आवास खोभार मिलेगा वही अच्छा लगेगा। जो आवास हम लोगों के यहाँ सुअर जहां रहता है उसको खोभार कहते हैं। एक घर में 50 सुअर को लोग कर देते हैं, जिसमें अलग बाथरूम टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं है, सुअर उसी में शौच करते हैं, पड़े रहते हैं, खुलते हैं, दिन में चरते हैं, रात में बंद। सुसु करोती इति सुकर, उसी को सुकर को हम लोग सुअर कहते हैं, बड़ा बीट बड़ा ग्रामीण सुअर, वन्य सुअर नहीं। तो उसी गंदे स्थान को ही सबसे अच्छा मानते हैं, मल मूत्र का भरा हुआ गड्ढा होगा तो वहां जाकर आराम से लेटते हैं, लेकिन कोई बहुत अच्छा सोफा सेट बिछा करके बहुत अच्छा गद्दा बिछा करके और उजला बेड शीट और किसी सुअर को लाइए कि बैठी है, तो समझेगा कि हमको कोई दंड दे रहा है, वो भागेगा, वहां नहीं बैठ सकता है। आप हार जाइएगा, वो नहीं बैठ सकता है, के करके चिल्लाएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हमको तंग कर रहा है। और मल मूत्र का गड्ढा होगा, कीचड़ होगा, वहां उस अंगराग को लपेट करके आराम, क्योंकि वह देह सबसे ज्यादा प्रिय, चूंकि आत्मा साथ में है इसलिए वह देह प्रिय है और उस देह के समुचित भोग प्रिय है। तो आप इस समय राज देह में हैं, तो आप समझते हैं कि राजोचित भोग बहुत प्रिय लग रहा है, लेकिन जब आप सुअर शरीर में जाएंगे तो वही भोग आपको प्रिय लगेंगे, बल्कि राजा के सिंहासन पर आपको जबरदस्ती बैठाया जाएगा तो आप बैठेंगे नहीं, लेकर के भागे, बहुत जोर से भागता है भाई साहब, इतना डल नहीं है। जमराज जी भाग गए जान बचा करके, मार्कंडे जी आज तक चिरंजीवी है, आज तक भगवान के परम भक्त हैं और शिव जी के भी भक्त हैं, आज तक बच गए। ऐसा तो नहीं हुआ कि मार्कंडे जी किसी की जान मार करके, किसी को सता करके बच गए, भगवान शंकर की आराधना करके चिरंजीवी हो, अजामिल मृत्यु के पास से बच गए कुछ दिन के लिए, क्योंकि भगवान का नाम लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मृत्यु से बचा जा सकता है, ये प्रश्न हो रहा है, क्या टोटल मृत्यु से नहीं बचा जा सकता है, ये हम मरे ही नहीं, इसका भी उपाय है, उसके लिए उपाय है, एक बार तो ये शरीर जाएगा इतना तो विश्वास रखिए, लेकिन इसके बाद ऐसा स्वरूप मिलेगा कि फिर नहीं मरेंगे। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैत मामेत सोजना, अथवा यदि यही इच्छा है कि हम इस शरीर में भी न मरे तो इसका भी उपाय है, जैसे ध्रुव महाराज इसी शरीर से वैकुंठ चले गए, मरे नहीं, यही शरीर उनका चिन्मय हो गया, दिव्य हो गया, शरीर गिरा नहीं, यह भी उपाय है। लेकिन उल्टा पाप करने से तो आयु घट जाती है, पाप करने से, किसी को सताने से, जो लिखा हुआ है, जिसने लिखा है कि ये 50 बरस के बाद मरेगा तो देखता है कि पाप कर रहा है तो वो माइनस कर देता है, बीच में घटा देता है, डिस्काउंट करता है, घटा देगा, उसके हाथ में है ना लिखा हुआ। और शुभ कर्म करता है, खास करके भगवान का नाम जो जप करता है, तो ब्रह्मा जी उसकी आयु 2-4 वर्ष निश्चित बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये हाथ में है भगवान के, ब्रह्मा जी के, इस तरह से आयु को बढ़ाते हैं। और बाकी सामान्य जो नियम है उसमें एक सेकंड भी नहीं बढ़ सकता है, जो लिखा गया लिखा गया। हम लोग एक कथा पढ़ते हैं, एक बार एक व्यक्ति के मन में इच्छा हो गई कि मैं न मरूं, बहुत अभिलाषा हो गई, और वे थे बस व्यास देव के नाना जी, जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से मैं एक कथा सुना, भले बहुत प्रसिद्ध संत हो गए हैं उत्तर भारत में। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी सुना रहे थे कि व्यास जी के नाना के मन में ये इच्छा हुई कि मैं न मरूं, तो लोगों से कहा करते थे इधर उधर के, ये भाई मेरी मरने की इच्छा नहीं होती है, मैं क्या उपाय करूं कि मैं न मरूं। तो लोगों ने कहा कि अरे व्यास देव आपके नाती हैं, वो भगवान के अवतार हैं, आप उनसे कहिए, वो कुछ उपाय करेंगे। तो नाना जी पहुंचे व्यास देव के पास और कहे कि देखो, मरने के लिए दुनिया भरी पड़ी है, जिसको मरना है मरे, लेकिन हमको मरने की इच्छा नहीं होती है, कोई उपाय करो कि जमराज जी हमको न मारे, मैं बच जाऊं। व्यास देव ने कहा कि तो कठिन है, मरने का नियम तो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, लेकिन नाना जी हठ योग करने लगे, कहने नहीं 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 हमको बचाओ किसी तरह से, मैं मरना नहीं चाहता, मरने में बड़ा तकलीफ है। तो वेदव्यास देव कहे कि अच्छा ठीक है। तो वेदव्यास देव ले गए उनको ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ही मृत्यु लिखते हैं किसी की। ब्रह्मा जी के पास ले गए वेदव्यास देव। वेदव्यास देव भी गए। वेदव्यास देव ने उनके नाना से कहा कि ब्रह्मा जी से कहो। तो उन्होंने कहा कि सरकार आप ही सबकी मृत्यु लिखते हैं, तो हमारा नाम रजिस्टर से काट दीजिए, हटा दीजिए, मैं न मरू। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए जी, मैं तो ईश्वर के आज्ञा के अधीन हूँ, भगवान के आज्ञा के अधीन, मैं किसी के कर्मानुसार ही मृत्यु लिखता हूँ, इसलिए मैं नहीं हटा सकता, मेरा पावर नहीं। मृत्यु विभाग के अधीश्वर हैं भगवान शंकर, उनसे आप अगर कहेंगे तो हो सकता है कि माफ कर दें। तो कैसे ठीक है। तो वेदव्यास देव के नाना जी ने कहा कि इनको भी ले चलो, ये भी पैरवी करेंगे। तो ब्रह्मा जी भी चले, वेदव्यास देव भी चले, वे गए शंकर जी के पास। शंकर जी ने स्वागत किया ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, आदर किया। कैसे आए तो नाना जी को बोलने का आदेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि सरकार सुनते हैं कि आप ही प्रलय विभाग के हेड हैं, तो आप हमको छोड़ दीजिए, हमको मत मारिए। शिव जी ने कहा कि हमको तो भगवान ने ड्यूटी दिया है मारने का, हम स्वतंत्र नहीं है मारने में, इसलिए ना तो हम किसी को छोड़ सकते हैं ना किसी को मार सकते हैं, हम तो अधीन हैं, हम कुछ कर नहीं पाए। और मारते हैं जमराज जी, इमीडिएट काम वही करते हैं, तो जमराज जी से आप जाइए कहिए, हो सकता है कर फ्री कर दे, कुछ दिन छोड़ दे, वो भी तो मारने के लिए मार देंगे, लेकिन हो सकता है कुछ ज्यादा दिन छोड़ दे आपको। तो नाना जी ने कहा वेदव्यास देव से कि इनको भी ले लो। तो शंकर जी, ब्रह्मा जी और वेदव्यास जी तीनों गए जमराज जी के। जमराज जी देखे दोनों ईश्वर आए हैं, तो वो तो सष्टांग प्रणाम किए, स्वागत किए, कैसे आए हमारे घर में। तो पता चला कि इस बूढ़े को बचाने के लिए आए, मरना नहीं चाहते। जमराज जी ने कहा कि मैं किसी को नहीं मारता हूं, महाकाल मारते हैं, भगवान की एक शक्ति है महाकाल, वही किसी को मारते हैं, मैं नहीं मारता हूं। तो चलिए तो महाकाल से कहा जाए। तो जमराज जी भी गए महाकाल के ऑफिस में। महाकाल ने सबका स्वागत किया। महाकाल के यहाँ चित्रगुप्त जी रहते हैं, जो हेड कलर कहें, किसी के जन्म मरण का निबंधन करते हैं, लिखते। कहा कि हम मरना, उन्होंने कहा कि हम मरना नहीं चाहते हैं, मरने के लिए सारी दुनिया भरी पड़ी है, मारा कीजिए, लेकिन एक हमको छोड़ दीजिए, उससे क्या हानि होगी, हमको छोड़ दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। महाकाल जी ने कहा चित्रगुप्त जी से, चित्रगुप्त जी जरा इनका रजिस्टर मंगाइए, कब मरने का लिखा हुआ है जरा देखिए। चित्रगुप्त जी अपना रजिस्टर लेकर के आए और खोल करके पढ़ने लगे, लिखा हुआ था। अच्छा, और जहां तक भगनी के वध की बात है, तो ऐसा विकर्म आप करेंगे, ऐसा पाप करेंगे, तो इसके चलते भविष्य में आपको और ज्यादा देह बिगड़ने, अधम देह मिलने की आशंका है, आपकी अधोगति होगी। आखिर देह जाएगा ही और दूसरा देह मिलेगा ही, और सभी देह एक समान प्रिय है, अतः भगनी बध रूप विकर्म करके आप अपने भविष्य को और अंधकार में मत डालिए, छोड़ दीजिए, जो होने वाला है होगा, कोई बात। ये सिद्धांत इस श्लोक में व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन एक दृष्टांत द्वारा दृष्टांत देते हैं। ज्योतिर्जथाई वोदक पार्थिव स्वदह समीर वेगानुगतम विभाग एवं सोमाया रचते सुसल पुमान गुणे सुरागानुगत विमोहते। सिद्धांत बहुत ही सुंदर है दृष्टांत। अदह ज्योति, यह ज्योति
श्रील सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं तो कंस की स्थिति को बता रहे हैं, वसुदेव जी शिक्षा दे रहे हैं। तो उस समय दिन था, तो अदह ज्योति का अर्थ है यह ज्योति। वसुदेव जी कंस को ऊपर दिखाकर कह रहे हैं अदह ज्योति, अथवा कोई बिजली का बल्ब जल रहा होगा उसको दिखाकर कह रहे हैं, या चंद्रमा को अदह से रात्रि में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा को हम बताया जाता है अदह ज्योति, यह ज्योति। हम पहले उसको ऐसे समझा लेते हैं, जैसे किसी उदक पार्थिव से किसी बर्तन में जिसमें जल भरा रहता है या तेल भरा रहता है, उस बर्तन को यदि आप रखिए जमीन पर तो चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें पड़ता है जल में या तेल में, चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है। ज्योतिर्जथाई उदक पार्थिवेश, उदक पार्थिवेश अदह ज्योति। तो चंद्रमा को यदि हम लोग ऊपर देखते हैं तो चंद्रमा बिल्कुल अस्थिर दिखाई देता है, वो चंचल सकंप नहीं दिखता है, उसमें कंपी नहीं होती है, तो वह बिल्कुल अचल दिखता है। लेकिन जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखा जाता है तो वह कांपता हुआ दिखाई देता है, और दीर्घ ह्रास्व वर्तुल, कभी गोलाकार कभी टेढ़ा मेढ़ा, कभी लंबा कभी गोला, कभी झिलमिल झिलमिल करता हुआ दिखाई देता है। ये दृष्टांत बताया जा रहा है, प्रयोगशाला है, श्रीमद् भागवतम में अनेक प्रयोग दिए गए हैं। प्रतिबिंबित चंद्रमा को या सूर्य को हम लोग देखते हैं कि वह कटा छटा दीर्घ वर्तुल ह्रस्व आदि रूप में दिखाई पड़ रहा है। क्यों ऐसा दिखाई देता है? समीर वेगानुगतम, क्योंकि चंद्रमा जल में प्रतिबिंबित है, जल जो है वो समीर वेग अनुगतम, समीर चल रहा है जल पर, हवा चल रही है धीरे धीरे, तो हवा के चलने से जल हिलता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता हुआ सकंप दिखता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा वैसा है नहीं। तो यहां पर हम लोग दो विशेषता देखते हैं, एक तो यह देखते हैं कि जल चमक रहा है, लेकिन जल में चमक अपनी नहीं है, जल में जो चमक है चाकचिक्य है वह है चंद्रमा का होता है, चंद्रमा में प्रकाश बहुलता है, प्रकाशित चीज है, इसलिए जल भी प्रकाशित दिखता है, चमकता हुआ दिखता है, जल में अपनी चमक नहीं है। अच्छा, दूसरी क्या विशेषता देखते हैं कि चंद्रमा कटा छटा दिखता है, झिलमिल दिखता है, लंबा इत्यादि दिखता है, चंद्रमा ऐसा नहीं है। तो यह किसका धर्म है जो चंद्रमा में आरोपित करके जीव देखता है? वह धर्म है जल का, जल हिल रहा है, जल कांप रहा है, इसलिए चंद्रमा कांपता हुआ दिखाई देता है। तो जल में चमक नहीं है पर वो चमकता हुआ दिखाई देता है, और चंद्रमा में कंप नहीं है, छेड़ता नहीं है, हिलता पना नहीं है, लेकिन वो दिखाई पड़ रहा है। क्यों? जल का धर्म चंद्रमा में हम देख रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, देह और आत्मा दोनों पर इसको बैठाना होगा, इस तरह से वसुदेव जी समझा रहे हैं। कोई व्यक्ति सोच सकता है क्या इतना देर तक वो समझाते होंगे? ये पहले के लोग बहुत विद्वान थे, कंस भी, वो केवल श्लोक बोलने से समझ गया, हम लोगों को तो पूरा खोल करके समझाना पड़ता है, फिर भी नहीं समझ पाते हैं कुछ लोग। इतना स्टैंडर्ड गिर गया दिमाग का, पढ़ाई का, वैदिक कल्चर का, ये अब लोग बहुत ज्यादा समझाने के बाद तब समझते हैं। तो चंद्रमा को आत्मा स्थानीय समझना चाहिए, आत्मा जो जीव का स्वरूप है अपना, जो हम हैं वो है चंद्रमा की तरह मान लीजिए, और जो मन है, मन या स्थूल शरीर, वो है जल, जलस्थानीय। तो हम क्या करते हैं कि देह का जो धर्म है मर जाना, काला होना, मोटा होना, क्षीण होना, दुबला, रोगी, इन धर्मों का आरोप आत्मा पर करते हैं, सोचते आत्मा मर जाएगा, आत्मा काला है, मतलब मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मुझे बुखार आ गया है, मैं इस परिवार का हूँ, मैं उस परिवार का हूँ, मैं इसका बंधु हूँ, मैं इसका बंधु हूँ। इस तरह देह के धर्म है, देह किसी का बंधु है चाहे देह है। देह तो पंच भौतिक है, वास्तव में कुछ है नहीं, ये तो जड़ वस्तु है, लेकिन देह का ये स्वभाव है, एक दिन बना है एक दिन बिखर जाएगा, मर जाएगा। देह काला होता है, देह गोरा होता है, देह को में फीवर बढ़ता है, बुखार होता है, देह ठंडा हो जाता है, देह अस्त्र से कटता है, हवा से सूख जाता है। देह के ये धर्म कहे जाते हैं, भूख लगना, प्यास लगना, सब देह धर्म है। धर्म का अर्थ होता है संस्कृत में स्वभाव, ये देह के सब स्वभाव। देह के स्वभाव को हम आत्मा पर आरोपित करते हैं, हम विचार करते हैं तो सोचते रहते हैं हाँ एक दिन मैं मर जाऊंगा, मैं बहुत दुबला हो गया हूं। दुबला वो आत्मा नहीं है, वो जैसा है ऐसा है। आत्मा ना तो दुबला है ना पतला है, वो जैसा है भगवान का नित्य पार्षद परम सुंदर जैसा है। लेकिन देह के अनुसार अपने में सोच विचार करता रहता है, मैं ऐसा हूं, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ये। अच्छा, ये तो हम देह के धर्म को आत्मा पर आरोपित करते हैं, ये क्या संगति बैठेगी? जैसे चंद्रमा पर हम लोग जल के धर्म का आरोप करते हैं, जल का संकम सकंप होना हम चंद्रमा में आरोपित करते हैं, और आत्मा के धर्म को देह पर आरोपित करते हैं। आत्मा का क्या धर्म है? चिन्मयता, प्रियता, नित्यता। तो जैसे हम चंद्रमा के धर्म को जल पर आरोपित करते हैं, कहते हैं जल चमक रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, जल नहीं चमक रहा है, जल में अपनी चमक नहीं है, तो हम लोग कभी कभी देह को कहते हैं कितना सुंदर देह है, हमारा देह प्रिय है, हमारा देह नित्य है, हमारा देह सुखमय है। तो आत्मा का जो धर्म है हम देह में आरोपित करते हैं, और देह का जो जन्म मरण आदि का धर्म है वो आत्मा में आरोपित करते हैं। इस तरह से फंस गए, आरोपित कर लेते। यह अभी उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए है, जैसा मैं शुरू में कहा कि कंस कहा कि राज देह कहाँ मिलेगा, फिर कंदम देह मिल जाएगा, कुत्सित देह मिलेगा, तो कहते नहीं नहीं कोई कुत्सित देह नहीं होगा, जहां आपको वो देह मिलेगा तो आत्मा का धर्म आरोपित करेंगे ही, तो वही देह प्रिय लगेगा, आत्मा नित्य प्रिय है, तो जिस देह में आत्मा जाता है वही देह प्रिय लगने लगता है। तो यह प्रत्यारोप का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें समझना चाहिए, न हम गोरा है न हम काला है, न हम मोटा है न हम चीन है, न हम बीमार पड़ते हैं, न हमें खांसी होती है, न हम भारतीय हैं, न हम अमेरिकन हैं, न हम ब्राह्मण हैं, न हम शूद्र हैं, न हम पशु हैं, न पक्षी हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं न हम कैट हैं, न डॉग हैं। वो बारंबार कहते जाते हैं, आई एम कैट, आई एम डॉग, ये सब सोचने बेकार है, हम ये देह नहीं है, ये देह तो एक दिन बिखर जाएगा, पंचत्व में चला जाएगा और हम जाएंगे फिर दूसरे देह में, अथवा यदि भजन ठीक से करते हैं तब भगवान के पास जाएंगे। ये जो आरोप है इसको खत्म करना है, देह के धर्म का आरोप आत्मा पर और आत्मा के धर्म का आरोप देह पर करते हैं, ये ठीक नहीं है। तो आप चिंता मत कीजिए, कोई भी शरीर एक समान प्रिय होगा, जिस देह में आत्मा जाएगा वही देह प्रिय होगा, तो चिंता मत कीजिए, और इसके कारण भग्नि बध रूप पाप मत कमाइए, छोड़ दीजिए इसको। लेकिन कंस जीने के फेर में इतना पड़ा था कि वो नहीं छोड़, तब वसुदेव जी ये तो जुक्ति बता रहे थे, इसमें बताने में देखिए पहले साम नीति से उन्होंने काम लिया, साम नीति के बाद जुक्ति दिए, जुक्ति का अर्थ होता है ज्ञान, लेकिन यहां ज्ञान शब्द नहीं कहेंगे उसको, क्यों? क्योंकि कंस के हितैषी बनकर के उसको युक्ति सिखा रहे हैं, जब मरना पड़ेगा तो ऐसे मरा जाता है, शरीर और आत्मा की स्थिति है, युक्ति बता रहे थे, जुगाड़ या उपाय बता रहे थे। कि आप नहीं मरेंगे, ऐसा है वैसा है ये है, ज्ञान देना भी एक जुक्ति है। लेकिन यदि यह कहा जाए कि वसुदेव जी उसको ज्ञान दे रहे थे तो वो सुनता ही नहीं। हम समझ रहे हैं इस बात को, दोनों में अंतर क्या है। क्यों टीकाकार कहते हैं कि वसुदेव जी जुक्ति बता रहे हैं, ज्ञान देने का मतलब है कि तब वो ये सोचता है कि वो ये तो गुरु बन गया है, सिखा रहा है। और युक्ति बताना वो मित्र का काम है, हितैषी का काम है। तो मित्र के तरह वसुदेव जी युक्ति बता रहे थे, विरोध नहीं कर रहे थे, आप इस तरह से कीजिए, यह करना युक्त होगा, ठीक होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन देखे कि ये तो मान नहीं रहा, ज्ञान उसके समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन फिर भी स्वभाव था पाप करने का, हत्या करने का, इसीलिए अभी भी देवकी का मस्तक काटने के लिए वो तैयार ही थे। अब इतना ज्ञान देने के बाद भी दुराचार छोड़ नहीं रहा था, तो वसुदेव जी भेद नीति से काम ले रहे हैं। भेद नीति दो प्रकार के वचन बोले, दृष्ट भय और दुष्ट भय बता रहे हैं। उन्होंने कहा न तस्मात् कस्यचित् द्रोहम् आचरेत् स तथा विधः आत्मनो क्षेमम् अन्विच्छन् द्रोग्धुर्वै परतो भयम् तथा विधः। इसलिए हे महाराज कंस, आप भी ऐसे ही हैं, आपका भी शरीर छूट जाएगा, आप भी दूसरे देह में जाएंगे और इस तरह से विवश हैं, माया के वश में हैं। या कोई भी व्यक्ति तथा विधः, जिसका जन्म मरण निश्चित है और दूसरा शरीर मिलेगा ही और ये शरीर छूट ही जाएगा, परवश है जीव, शरीर छूट जाता है, पुनर्जन्म होता है। अतः आत्मना क्षेमम अनविच्छन, जो व्यक्ति अपना हित चाहता है, कल्याण चाहता है, उसे चाहिए कि किसी भी व्यक्ति से द्रोह ना करे, किसी का वध ना करे, किसी को सतावे ना। अगर कोई व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, हित चाहता है, जैसे आप चाह रहे हैं, आप अपना हित चाह रहे हैं, कल्याण चाह रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक सुझाव देता हूं कि किसी को सता करके, किसी को मार करके अपना हित मत चाहिए, अपना हित मत आपकी इच्छा कीजिए, क्योंकि द्रोगधुर वही परतो भय, ये भेद कर रहे हैं। द्रोगधुर वही द्रोगधुर, जो द्रोह करता है, दूसरे को सताता है, पीड़ा देता है, मारता है, तो परतो भय, उसको दूसरों से भय होता है। किससे भय होता है? पहला भय तो इस जगत के जो नियामक हैं समस्त प्राणियों के, विशेषकर मनुष्यों के और पापियों के, तो जमराज से भय होता है। जमराज निश्चित दंड देते हैं, और कोई व्यक्ति और लोगों के चंगुल से छूट जाए, लेकिन जमराज से छूट जाएगा ऐसा नहीं, तो मरना ही पड़ता है, और जहां भेज देंगे वहां जाना पड़ता है। भागवत में ऐसा लिखा गया है कि जब जीव नरक में जा करके जमराज जी के दूतों से कहता है हमको क्षमा कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती किया है, पाप किया है, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, जब क्षमा करने को कहता है तो 100 गुना पीटते हैं। जमराज के दूतों को ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे यहां पर पुलिस को गाली देने और मारने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह से जमराज के दूतों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी, कैसे मारना चाहिए, काटना चाहिए, छेद करना चाहिए, आग में जलाना चाहिए, कितना भी हाहाकार करे, कोई कुछ भी करे, लेकिन फिर भी मारना चाहिए। तो इस तरह से ट्रेनिंग ले करके, और जब परीक्षा में पास हो जाते हैं वो, तब उनको जमराज का दूत बनाया जाता है। ठीक है, अब ठीक है, कोई कितना भी निहोरा करे, प्रार्थना करे, लेकिन जमराज के दूत सुनते नहीं, मारते ही रहते। तो इस जीवन में जो व्यक्ति दूसरे को सता रहा है, किसी मनुष्य को दुख दे रहा है, अथवा किसी पशु को काट करके खा रहा है, जबकि वह बेचारा पशु उसी दिन दशा में है जिस दिन दशा में ये है, ये जीना चाहता है लेकिन दूसरों को मार करके जीना चाहता है, तो एक दिन जमराज के कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। तो जमराज जी डायरेक्ट बात नहीं करेंगे ऐसे पापियों से, तो पहले से ही कह देंगे कि जाओ उसको मारो, विविध नरकों में डालो। ऐसा कहा गया है कि जो लोग पशु खाते हैं तो पशु के शरीर में जितने रोएं रहते हैं, जितने रोम केस रहते हैं, उतने उतने कल्प तक नरक में रहना पड़ता है। कल्प कल्प भर एक एक नरक का, एक एक नरक में एक एक कल्प, और नरक भी असंख्य है। तो नरक से कभी भी छुटकारा नहीं मिलने वाला। और कोई व्यक्ति मूर्खता बस नरक की सत्ता न माने तो उसके लिए नरक से बच जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति है जिसको कारागृह विभाग का ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है कि पुलिस क्या है और कारागृह क्या है, कोर्ट क्या है, तो कहेगा कि मैं तो जेल नहीं मानता हूं, मैं पुलिस भी नहीं मानता हूं। लेकिन जिस दिन पकड़ा जाएगा और पुलिस के डंडे उस पर लगेंगे और कारागृह में जाएगा, तब कहेगा ओ सत्यम कारागृह, कारागृह भी एक सत्य वस्तु है और पुलिस भी सही वस्तु है, फैक्ट है। जब तक पाला नहीं पड़ा है तब तक तो कल्पना है। उसी तरह से जिस दिन नरक के द्वार पर पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि हाय रे भगवान, मैं तो झूठा समझता था, कथा कहने वालों को भी झूठा समझता था, वे स्वर्ग नरक की बात करते थे तो मैं झूठा समझता था। तो उसके लिए भी पीटा जाता है कि क्यों झूठा समझा, झूठी कथाओं को, झूठे अखबार को सही समझा और वेद शास्त्र को झूठा समझा, जो सही बात थी उसको झूठा समझा और जो झूठी बात है उसको सही समझा। इस संसार में देखते हैं झूठी झूठी कहानियां लोग लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं और ट्रेन में पढ़ते जाते गाते भी हैं कि झूठे मोहब्बत की झूठी कहानी पर रोए। तो स्वयं रोने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मैं झूठी झूठी कथा पर, मोहब्बत की झूठी कथा पर मैं रोया खूब, तो क्यों रोए? और उस कथा को पढ़ करके अब आजकल के बुद्धू लोग रोते हुए चलते हैं, रुमाल से आंसू पोछते रहते हैं ट्रेन में रो रो के। झूठी कथा है, जो सही भगवत गीता है उसको तो पढ़े नहीं, श्रीमद भागवतम पढ़े नहीं, झूठी कथाएं पढ़े। तो वहां जाकर के अगर जमराज के दूत से कहेंगे कि मैं तो गीता को झूठा समझा, भागवत को झूठा समझा, तो और पीटेंगे, क्यों झूठा समझा, सही को क्यों नहीं सही समझा? ये तुम्हारी जिम्मेवारी थी ना, अपनी जिम्मेवारी है ना कि यहां पर जो सत्य वर्णन है उसको समझे और नकली है, कचरा है, ढोंग है, उसको छोड़। उसी कचरा को रोज रोज जब सवेरे होते ही जितना चाव से न्यूज पेपर पढ़ते हैं उतना चाव से गीता पढ़ना चाहिए ना, भागवत पढ़ना चाहिए। सवेरे सवेरे कौवे की तरह काव काव, क्या हुआ क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, कौन क्या हुआ, चक क्या बोला, यही पढ़ना है। यह मिनिस्टर क्या बोला, वह मिनिस्टर क्या बोला, और सब झूठे मिनिस्टर। अरे जो बोले हैं भगवान उसको तो सुनिए, श्री भगवान वाच, श्री सुखा वाच, ये सुनने लायक चीज। मैं बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूं, मनुष्य जीवन में यह सुनने के लिए बनाया गया है, ये सब कचरा नहीं कि मॉर्निंग न्यूज सवेरे सवेरे दुनिया के कचरा दिमाग में ठूसते हैं, कान के रास्ते आंख के रास्ते से भरा हुआ है मन में, दुनिया भर का समाचार लाकर ये भरो ये भरो ये भरो, उसको तो निकाल करके अब अमृत भरना है। हाँ तो मैं यह कह रहा हूं कि जो भी प्रायश्चित है, जो भी सुधार है यहां है, मरने के बाद जमलोक के पथ पर अब कोई सुधार नहीं, कोई सुनवाई नहीं, लेकिन यहां काफी चांस है। श्री सुखदेव गोस्वामी छठे स्कंध में कहते हैं कि बहुत टाइम है, अब से भी पाप छोड़ करके और भगवान का नाम लिया जाए तो पहले के सारे अपराध माफ कर दिए जाते हैं यहां पर, लेकिन यहां यदि नहीं किए तो फिर वहां पर कोई सुनवाई नहीं। यहां पर थोड़ा कर्म करने से भी, थोड़ी भक्ति करने से भी सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, नामाभास से ही पाप खत्म हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, यहाँ पर कर लेना चाहिए। श्रील वसुदेव जी कहते हैं कंस कि राजन, कोई भी व्यक्ति जो अपना कल्याण चाहता है, हित चाहता है, आत्मनो क्षेमम अनु इच्छन, जो निरंतर अपने कल्याण की कामना करना चाहता है, उसके लिए चाहिए कि वह दूसरों को सताना छोड़ दे। तो दूसरे को मार करके, दूसरे को सता करके कभी हित होगा ऐसा हो नहीं सकता। एक एक क्रिया का दंड भोगना पड़ेगा इस प्रकार की क्रियाओं का। तो आप यदि अपना हित चाहते हैं, आप सुख चाहते हैं, तो अपने भगनी के वध रूप इस विकर्म से विरत हो जाइए। ये काम मत कीजिए। आप सुख चाहते हैं तो आपको दोनों तरफ से भय होगा, एक तो जमराज से भय है और दूसरा भय देवकी के बंधुओं से होगा। देवकी के पिता जो जीवित रहेंगे, इसके सब संबंधी जीवित रहेंगे, और आज मान लीजिए आप देवकी को मार देते हैं तो मन में कह रहे मैं भी जीवित रहूंगा तो मैं भी बदला लेने की चेष्टा करूंगा आपसे। आज मैं कमजोर पड़ रहा हूं लेकिन भगवान की कृपा से कुछ दिन के बाद हो सकता है मैं बदला चुका लूं आपसे। ये डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं लेकिन ये कह रहे हैं कि देवकी का एक भी परिवार बचा रहेगा तो ये याद करेगा कि कंस ने देवकी का वध किया था तो बदला लेने की तैयारी करेगा ही। ये भय बना रहेगा, भले वो बदला ले सके या ना ले सके, लेकिन ये भय आपके लिए रहेगा। और वास्तव में इस संसार में देखा गया है कि कोई व्यक्ति कितना भी बलवान हो, किसी निर्दोष व्यक्ति का वध कर देता है तो उसी समय उसके जीवन में भय आ जाता है, छा जाता है। कितना भी बलवान आदमी अब बचना चाहता है वो डर करके रहता है। आप देख सकते हैं संसार में कोई किसी का वध किया है वो आदमी खुलम खुला निर्भय नहीं घूम सकता है। और जिसने किसी का वध नहीं किया है, जिसने किसी को सताया नहीं है, वो बिना अस्त्र के, बिना सिक्योरिटी के रक्षा को घुमा करता है, उसको कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन वो भले बहुत बड़ा मंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, राजा हो, लेकिन किसी का वध किया हो तो क्या मजाल कि वो घूम जाए अकेले, उसको भय होता है। कहीं भी मारा जा सकता है, कर्म का ऐसा कठिन फल है। तो कंस को समझाया जा रहा है कि यदि आप आज मार देते हैं लेकिन आप पर उसी आज से ही खतरा चालू हो जाएगा, तो परलोक भी बिगड़ेगा, नरक में गिरेगा और इस लोक में भी आपको मरने का भय और ज्यादा बढ़ जाएगा। देवकी तो मर जाएगी, देवकी के पुत्र नहीं होंगे लेकिन देवकी के संबंधी रहेंगे वे मारेंगे। तो इसे तो बेटर है कि देवकी को जीने दीजिए और सात लड़के जब हो जाए तो आठवें लड़के, आठवां जब पुत्र हो तो आप देवकी के पुत्र से मित्रता बढ़ाइए, उसे स्नेह कीजिए और बारंबार ऐसी भावना कीजिए कि आपको मामा मान करके वो आपसे प्यार करे। क्यों मारेगा भाई? उपाय करना है तो मार्कंडेय जी की तरह चिरंजीवी होने का उपाय कीजिए, ये वैध तरीका है ना। या आप कहेंगे तो मैं भी प्रयास करूंगा, देवकी का आठवां लड़का होगा तो कहूंगा कि बेटा मामा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारी माँ को मारने जा रहे थे लेकिन कृपा करके छोड़ दिए, इसलिए तुम भी मत मारना, कितना भी गलती करेंगे मैं भी अपने बेटा को सिखाऊंगा और देवकी भी सिखाएगी। किसी भी तरह से आठवें बेटा से आप अपने आठवें भागने से प्रेम कीजिए, और नहीं मारना ही है तो आठवें को मार दीजिएगा। जो कुछ भी करना हो, अभी सात बच्चा तो होने दीजिए बेचारे, इसको तो जीने दीजिए। ये सब बातें कह नहीं रहे हैं लेकिन मन में ये सब बातें आ रही हैं। तो किसी भी तरह से आपको इस तरह का पाप करना ठीक नहीं। उन्हें भय दिया, दृष्ट और अदृष्ट भय। दृष्ट भय तो देवकी के संबंधियों से और अदृष्ट भय जमराज से, ईश्वर से। लेकिन इसके बाद भी वो नहीं माना। देवकी का केस पकड़े रह गया, तलवार को ऐसे ताने रह गया, नहीं मैं मारूंगा इसको। तब पुनः वसुदेव जी समझ गए कि हो, इसको भाई की बात कहना ठीक नहीं है। पुनः साम नीति से ही काम लिए, साम नीति ही बतानी चाहिए। तो फिर कहते हैं ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री को पमा, हम तुम ना रहसि कल्याणी इमाम तुम दीन वत्सल। तो फिर वही सामनीति शांति के मार्ग को अपना रहे हैं, जिसको छेड़ना ठीक नहीं था। देखेंगे अब तो मार ही देगा, तब कहते ऐसा। यह आप जरा ध्यान से देखिए देखिए, बेचारे जिसका आप केस पकड़े हैं, वसुदेव जी भी खड़े हो गए हैं, कंस को ऐसे रोक रहे थे, मना रहे थे, लेकिन हाथ ऐसे नहीं कर रहे थे निकट, केवल ज्ञान दे रहे थे, देवकी की दशा बता रहे। ऐसा यह ऐसा का अर्थ नव विवाहिता, अभी अभी बेचारी का विवाह हुआ है, इसके जीवन के मंगलमय दिन का प्रारंभ हुआ है और आप अमंगल करने जा रहे हैं, ठीक नहीं। यह क्या है जरा इस पर आप विचार कीजिए। ऐसा तव अनुजा, यह आपकी सबसे छोटी बहन है। वैसे तो बड़ी बहन हो चाहे कोई भी हो, स्त्री मात्र पर दया करना चाहिए, बहन पर दया करना चाहिए, उस पर भी छोटी बहन है। ऐसा तव अनुजा, यह बेचारी देव की आपकी छोटी बहन है, कृपणा और यह दीन है। देखिए किस तरह से रो रही है, विकल हो रही है, इसके केस खींचे जा रहे हैं और इसकी जान मारने जा रहे हैं। तो यह कृपणा है, बेचारी दीन है, ये अपने प्रयास से अपने को बचा भी नहीं पाएगी। तो कृपणा पुत्र को उपमा और अभेद जो सामनीति का एक अंग है, अभेद बता रहे हैं। सच कहिए तो कंस जी, यह आपकी पुत्री है, बहन नहीं है। पुत्री को उपमा, यह आपकी बेटी के समान है, आप अपनी बेटी का, अपनी पुत्री का हनन करने जा रहे हैं। अथवा पुत्र को उपमा का अर्थ है यह कठपुतली की तरह है, कोई प्रतिकार नहीं कर रही। देवकी बेचारी ऐसे हाथ भी नहीं कर रहे थे कि तलवार हाथ पर लग जाए और गला बच जाए, ऐसे भी नहीं कर रहे, रो रहे। और चेतन पुतलिका की तरह यह जो प्रतिकार नहीं कर रही है, आपकी पुत्री के समान है। कल्याणी, यह कल्याणी, कल्याणी का अर्थ यह निरपराधा है, आपका कोई इसमें अपराध नहीं किया। आपको अभी भी जब आप इसे मारने जा रहे हैं, इसने एक शब्द भी आपको अपशब्द नहीं बोला, आपको कोई ये नहीं कहा कि तुम क्रूर हो, ये हो, आपका कोई अपराध नहीं किया। कल्याण और आप हैं दीन वत्सल, दीनों से स्नेह करने वाले, तो देवकी से बड़ा दीन कौन होगा। इसलिए एतम हम तुम न और हंसी, आप इसका वध मत कीजिए, आपके लिए उचित नहीं है कि इसका वध करें, आप इसको छोड़ दीजिए, वध मत कीजिए। तो हम दीन वत्सल का सारस्वत अर्थ है कि दीनेभ्यो अपि राज करत्वेन वत्सम लाती इति दीन वत्सल। जो दीनहीन गरीब आदमी के घर से भी राजा के टैक्स के रूप में बछड़ा को खोल करके लावे, उसको दीन वत्सल। कभी कभी ऐसा होता था, किसी आदमी के घर पर कोई संपत्ति नहीं है, दीन है बेचारा, और गौ चली जाती है दीन में चरने के लिए, तो घर पर एक वत्स गाय का बछड़ा बंधा रहता है। तो राजा के सरकार के कर्मचारी आते हैं और कहते हैं इसने कर नहीं दिया है, कहाँ गया कहाँ गया, तो बछड़ा खोल कर ले जाते हैं। महाक्रूर, उसे दीन वत्स लाती, दीन के बछड़े को भी जो लावे क्रूर। तो सरस्वती जी यह बोल रहे कि आप तो दीन वत्सल हैं, दीनों के भी बछड़े को ला सकते हैं, तो त्वम एतम हंतुम किम न अरहसी अपितु अरहसी एव, क्या आप इसका वध करने योग्य नहीं, आपके लिए उचित है नहीं वध करना, इसका है उचित, आपके लिए यही उचित है कि वध कर दीजिए। मतलब सरस्वती जी बोल रहे हैं आपके लिए यही उचित, लेकिन प्रकट अर्थ है कि आपके लिए उचित नहीं है, आपकी छोटी बहन है, आपकी पुत्री है, दीन है, हीन है और निर्दोष है। मान लीजिए छोटी बहन है या बेटी है, लेकिन कुछ आपका अपराध किया होता तब भी आप मार सकते थे, लेकिन इसने कोई अपराध नहीं किया, अतः आप इसका वध मत कीजिए। लेकिन एवं स साम भीर्भेदैर बुद्धिमानोपि दारुणः न निवर्तत कौरव्य पुरुषादा ननु व्रतः। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हैं, हे कौरव्य, हे कुरु वंश में उत्पन्न परीक्षित महाराज, आपके भी वंश में एक दो आदमी ऐसे हुए थे जो किसी भी तरह से समझाने पर नहीं समझे थे, जैसे दुर्योधन, आप भी उसी खानदान के हैं। कौरव्य, वो घटना याद करा रहे, दुर्योधन इतना खल था, इतना दुष्ट था कि डायरेक्ट भगवान संधि दूत बन करके गए और पांच गांव मांग रहे थे पांचों भाइयों के लिए, पांच शहर मांग रहे थे, दे दो और सारी धरती रख लो, लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष हरि का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, लेकिन वह अभी दुर्योधन नहीं दिया, कहा कि बिना युद्ध के सुई की नोक से जितना भूमि का छेदन होता है उतना भी भूमि नहीं दे सकते बिना युद्ध, तो युद्ध हुआ और 18 दिन में संपूर्ण भूमि छोड़कर चला गया, 18 दिन युद्ध हुआ। कौरव संबोधन कर रहे हैं, यहां जदुवंश में ये कंस हुआ है और पूर्व वंश में दुर्योधन जी हुए थे, कितना भी समझाया जाए, वेदव्यास देव समझाए, मैत्रेय जी समझाए, विदुर जी समझाए, कोई समझाए लेकिन नहीं मानना, तो उनको समझा करके तो भगवान हार गए और कंस को समझा कर भगवान का बाप हार गया। यहां पर तो इतना ये खल था, दोनों बाप बेटा लगे रहे, भगवान लगे रहे कि दुर्योधन सुधर जाए, लेकिन नहीं सुधर। एक कवि ने कहा है कि खल में और सांप में खल ज्यादा भयानक होता है, सांप फिर भी मान जाता है, तो दुर्योधन में और शेष नाग में तुलना की जा रही है, वो कवि कर रहे हैं। देखिए, दुर्योधन को समझाकर भगवान हार गए लेकिन उसको अनुकूल नहीं बना सके, खल था, लेकिन महाभयानक शेष नाग को भी अपना मित्र बना लिए भगवान कृष्ण, सोते हैं सज्जा बनाकर, सांप भी मान जाएगा लेकिन खल नहीं मान सकते, सांप को भी अपने वश में किया जा सकता है लेकिन खल को नहीं। देखिए, भगवान नारायण सांप को अपने वश में कर, सबसे भयानक सर्प है, एक फूंक से सारा ब्रह्मांड जल कर राख हो जाता है, इतना भयावह सर्प, यदि वो भगवान के ही स्वरूप है लेकिन केवल सर्पत्व की दृष्टि से विचार कीजिए तो इतने भयानक सर्प के देह पर आराम से भगवान सोते हैं और उनको नहीं डसता है, बल्कि छत्र तान करके और सेवा करता है, अपने शरीर को कमल से भी अधिक सुकुमार बना करके भगवान के अंगों को सांप सुख देता है, तो सांप सेवा कर रहा है, बस में हो गया, लेकिन दुर्योधन बस में नहीं है। खल में और सर्प में खल ज्यादा भयावह होता है, कंस भी एक खल है, इतुक्त स खल पाप भोजा नाम कुलपांसन, सुखदेव गोस्वामी इसके लिए कहे, खल पाप भोजपांसन, भोजवंश का अंगार नष्ट करने वाला, इस तरह से उसको उपाधियां दे, तो नहीं माना। एवं स सामभीर भेदर बुद्ध मानो अपि, सामभी साम पांच प्रकार के साम नीति से समझाया गया है, जैसे पहले कहा गया श्लाघनीय गुण सूर्य भगवान भोज कर इत्यादि, बीच में जुक्ति बताई गई, इतना दुर्लभ ज्ञान दिया गया और उसके बाद फिर भेद नीति से समझाया गया, एवं स सामभीर भेद, यहां तक कि साम नीति को दोहराया गया और बहुत सुंदर ज्ञान दिया गया, लेकिन बोध माना है तो बोध दिया गया, शास्त्रों का दुर्लभ ज्ञान दिया गया, लेकिन न निवर्तित कौरव्य, हे कुरुवंशी परीक्षित, वह निवर्तित नहीं हुआ, देवकी के वध का दुराग्रह निर्बंध छोड़ा नहीं, मारना ही चाहता था, क्यों क्यों ऐसा किया, क्यों नहीं माना मारने से, क्योंकि दारुण, एक तो स्वभाव से ही वह भयावह था, क्रूर था, दूसरे की हिंसा करने में उसकी रुचि थी, बहुत भयावह था, दारुण, और ऊपर से राक्षसों के ही बीच में रहता था। पुरुषादन अनुव्रत, पुरुषान अदंति खादंति ते पुरुषादन, जो पुरुषों को मनुष्यों को खाते हैं उनको पुरुषाद कहते हैं, राक्षस। इसके जितने मंत्री थे और सहयोगी थे सब राक्षस थे, असुर थे उसके, जैसे अघासुर, बक, केसी, चारोर, मुष्टिक, जितने थे तृणावर्त वगैरह, धेनुक, अरिष्ट, ये सब राक्षस थे और यही इसके एसोसिएट्स थे। कोई बुद्धि भी लेता था तो इन्हीं लोगों से पूछता था कि अब हमको क्या करना चाहिए, वे लोग ठीक उल्टा बुद्धि देते थे। तो इन राक्षसों के बीच में रहते रहते इसका स्वभाव और क्रूर हो गया था और ऐसे जन्म से ही एक राक्षस था, एक राक्षस के द्वारा ही पैदा हुआ था। नाम भर था कि ये उग्रसेन जी का बेटा है, उग्रसेन जी का रूप धारण करके एक द्रोमिल नाम के राक्षस ने इसके मां के साथ संयोग किया था। वो राक्षस ही था जन्म से, वो कोई जादू नहीं था, तो राक्षस पना उसमें था। और पूर्व जन्म में अकालनेमी नाम का राक्षस था, पहले जन्म में भी राक्षस था, राक्षस से ही जन्म हुआ था और राक्षसों की संगति में रहता था, तो सुधार कैसे हो, एक भी कारण उल्टा हुआ होता तो कुछ सुधर सकता था। तो पूर्व जन्म से, संस्कार से और आधुनिक जन्म से और संगति से, तीनों से गया बीता था। पुरुषादन अनुव्रत, उनका ही अनुगामी था, वो जैसे कहते थे वैसा करता था, इसीलिए नम्न वर्तत, नहीं ही माना, इस तरह का स्वभाव। जन्म भी खराब हुआ हो, स्वभाव खराब हो और अपना संगी साथी भी खराब मिल जाए तो आदमी निश्चित नष्ट हो जाता है। को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। गोस्वामी तुलसीदास जी एक उदाहरण देते हैं कि खराब संगति पा करके कौन नष्ट नहीं हो जाते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण बहुत सुंदर दिया है, और सत्संगति पा करके कौन नहीं सुधर जाता है, तो धुआं का उदाहरण देते हैं। धुआं समझते हैं, स्मोक, तो धुआं हवा का संग करता है तो आकाश में चढ़ जाता है, हवा का संग करने से, और आकाश में जाकर के बादल बन जाते हैं, बादल बन करके पानी बरसाता है, दूसरे का उपकार करता है। और वही धुआं यदि ऊपर नहीं चढ़ा, आकाश का संग नहीं किया, तो लोगों के आंख में लग करके दुख देता है, नीचे रह गया तो आंख में पीड़ा उत्पन्न करता है। जब वही धुआं यदि किसी विद्वान के, शास्त्रज्ञ के हाथ में लग जाता है, तो उस धुएं को वे लोग किसी बर्तन में इकट्ठा करते हैं और कालिख बनाते हैं, कालिख काजल, और उसी काजल से सिलाही बनाते हैं, इंक बनाते हैं, मसी, और उसी से श्रीमद् भागवतम लिखते हैं। तो वह धुआं यदि किसी विद्वान के हाथ में पड़ गया तो वो पुराण लिखेगा, लिखिए पुराण मंज मसी सोई। वह धुआं और नहीं ऐसे केवल काजल बन गया तो कहीं भी लग जाएगा, बेकार हो जाएगा। अथवा अच्छा काजल बना तो स्त्रियां उसे अपने आंखों में धार लगाती हैं या पुरुष लगाते हैं, काजल भी बन गया तो अच्छी संगति कहूंगा, या बादल बन गया तो अच्छा हुआ, नहीं ऐसे ही रह गया, अच्छा संग नहीं प्राप्त हुआ तो वही कालिख रह जाएगा, धब्बा लगेगा, चाहे आंख में धुआं डाल करके अंधा बनाता चलेगा सब अपने, यही वो करेगा। तो कौन सा ऐसा ही था, हमारे यहां भोजपुरी में कहावत कहते हैं, एक तो आदमी स्वयं ही खराब है और संगति खराब मिल जाए तो उसको कहते हैं तो करेला अपने आप तीखा होता है और उसको नीम पर चढ़ा दिया जाए, नीम वृक्ष पर, तो वो कितना तीता होगा अपने आप में करेला बहुत पीता होता है और फिर नीम महाशय का संग करे तब तो कहना ही क्या है, कितनी पिताई उसमें आएगी। एक और कहावत कहते हैं एक तो रहली भाल दूजे पवली कुदाल। भाल भालू, भल्लूक समझते हैं ना, भालू। भालू एक जंगली जानवर होता है जिसके शरीर पर बहुत केस होता है काला काला, बहुत तो उसके तीक्ष्ण नख होते हैं, बहुत कठिन, और जमीन को ऐसे ही खोद देता है, बहुत गहरा खोदता है। हम लोग ने देखा है जंगल में, उसको भलकोड़ कहते हैं। भाल जहां, भालू जहां कोड़ता है, खोदता है बिना कुदाल के, बिना फरसा के कोड़ता है, तो जो बिना कुदाल के ही बहुत गहरा कोड़ सकता है, उसको कहीं कुदाल मिल जाए तो कितना कोड़ेगा, कितना खोदेगा। तो उसी को कहते एक तरह हली भाल दूजे पवली कुदाल। ऐसे ही एक क्रूर था और उस पर भी सब या घासुर बकासुर त्रिणावर्त धेनु अरिष्ट ये सब साथ ही मिलेंगे, लंब द्वीप जरासंध यही सब इसके सहयोगी। इस कारण से यह, इसको ये बुद्धि आई ही नहीं। वास्तव में जो भी बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, संगति पर निर्भर करता है। अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, बुरे लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। तो कंस छाट करके बुरे लोगों का संग कर रहा था, इसलिए इतना अच्छा ज्ञान दिया भगवान के पिताजी ने, लेकिन नहीं माना। साम नीति से बोले, बेटी कह रहे हैं कुंती को, देवकी को बेटी कह रहे हैं कि आपकी पुत्री है, आपकी छोटी बहन है, इसने कोई अपराध नहीं किया है, विवाह का अवसर है और आपकी बड़े बड़े वीर प्रशंसा करते हैं, आप कभी स्त्री का वध नहीं किए हैं, ये नहीं किए हैं, वो नहीं किए हैं, और दुर्लभ ज्ञान दे रहे हैं। मानो सुखदेव गोस्वामी भी शोक में डूब गए कि हे परीक्षित महाराज, फिर भी वो दुष्ट नहीं माना, क्या किया जाए। निर्बंधम तस्य तद्ज्ञात्वा विचिन्त्या नकदुन्दुभि प्राप्तं काल प्रतिवेढुं इदं तत्रानुपद्यत। तो उसके इस भगनी वध रूप निर्बंध को, हठ को, दुराग्रह को देखकर सुखदेव जी अब सोचने लगे क्या करना चाहिए। साम नीति फेल कर गई, भेद नीति फेल कर गई, जुक्ति ज्ञान दान भी सब फेल कर गई, और हाथ में तलवार लिया है, बहुत जल्दी सोचना है उनको कि अब क्या करें। एक उपाय तो विफल हो गया, अब दूसरा क्या करें। उसके निर्बंध को देख करके सुखदेव जी सोचने लगे, प्राप्तम कालम प्रतिवेढ़ इदम तत्रानुपाद। तो सोचने लगे कि किसी भी तरह से देवकी के इस मृत्यु को टालना चाहिए, किसी भी तरह से देवकी को बचाना है और बहुत जल्दी करना है। वसुदेव जी को, जैसे मैं एक दिन कहा था कि वो विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति थे, विलक्षण, इसलिए तत्काल ही वे सोच लिए, जो बातें हम कहने में देर कर रहे हैं उसको उन्होंने एक सेकेंड में सोच लिया कि ये करना है। बताइए जब कई उपाय विफल हो जाए और हाथ में तलवार लिया है क्रूर व्यक्ति मारने के लिए, उसको समझा पाना वास्तव में एक असंभव बात, बहुत कठिन बात थी, लेकिन फिर भी वसुदेव जी साहस नहीं खोए, हिम्मत नहीं हारे। तो वे अब दूसरे उपाय से देवकी की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बहुत विचार किया है, कौन से कुछ कहा है, वो समय हो गया, इसको हम दूसरे सिटी में फिर कहेंगे। हरे कृष्ण।